ओम शांति। आज का ये जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। इस सत्र की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैं मंच पर हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से निवेदन करूंगी। आदरणीय दीदी जी, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहनों से निवेदन करूंगी कि कृपया आप दीदी जी को ले आए। आदरणीय प्रेम दीदी जी, तालियां हम सब बजाते रहे, स्वागत करते हैं। आदरणीय भगिनी डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल जी, मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजयोगिनी बीके पूनम दीदी जी, आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ, कृपया आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। राजयोगी बीके सतीश भाई जी, आप भी मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। राजयोगिनी बीके नूतन बहन जी, आप भी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी हम सबसे पहले उस प्यारे प्रभु शिव बाबा को एक मिनट के लिए आज इस प्रोग्राम में बुलाएंगे। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ही श्री गणेश होती हैं और वो ईश्वरी याद से हम शुरू करेंगे। इसके बाद एक मिनट साइलेंस में रहकर हम बहनों से अनुरोध करेंगे स्वागत के लिए। बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ मंचन सिंह सभी मेहमानों का बैच एवं गुलदस्तों के द्वारा स्वागत करें। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, बहन खंडेलवाल जी, आदरणीय प्रेम दीदी जी, डॉक्टर बलराम गुप्ता जी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर बलराम गुप्ता जी, आप दिल्ली मध्य प्रदेश से पधारे हैं, कृपया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्वागत का सत्र आरंभ ही है। आप सभी अपनी करतल ध्वनि से फिर से इन महान विभूतियों का स्वागत करेंगे। तालियों की कमी हो रही है, तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि दिल की आहट और परम पिता के साथ मिल जाए वो ताली होती है, और सभी के दिलों को सुकून मिले वो मीठी बोली होती है, वो मीठी बोली होती है। अभी मैं इसके बाद मधुरवाणी ग्रुप से निवेदन करूंगी। मधुरवाणी ग्रुप को कौन नहीं होगा जो नहीं जानता हो। मधुरवाणी ग्रुप जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी सुरीली आवाज अवश्य ही वहां होती है। उसके बिना कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं होता। ऐसे मधुरवाणी ग्रुप हम सबके सामने एक स्वागत नृत्य के तौर पर लेकर आ रहे हैं। हमारे विवेक भाई जी अहमदाबाद, हमारे आदरणीय सतीश भाई जी माउंट आबू हेडक्वार्टर से मैं निवेदन करूंगी गीत की प्रस्तुति के लिए।
ओम शांति, ओम शांति। समापन कहने का मन नहीं करता है। कल तक तो देख रहे थे कि आप आएंगे आएंगे आएंगे। आपके स्वागत की उत्कंठा में पलक पावने बिछाए बैठे थे। आज कैसे कह दें कि विदाई की वेला आ गई। ये समापन नहीं है, ये शुभारंभ है। प्रिय बधाई की वेला, प्रिय बधाई की वेला समारंभ है। ये समापन नहीं, ये शुभारंभ है। ये समापन नहीं, ये शुभारंभ। हमारे साथ में अब तक आपने देखा होगा कि स्टेज के पीछे पूरा पूरी ऑफिस संभाली या यूं कहिए पूरी कॉन्फ्रेंस के कर्णधार बनकर पूरा कॉन्फ्रेंस संभाला। अब आज हमारा साथ देने के लिए गायक के रूप में भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं मधुर वाणी में। एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे विवेक भाई का अभिनंदन करते हैं। बहुत 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 बहुरंगी है, बहुत विविधा विविध विधाएं हैं आपके पास, बहुत स्वागत है। गीत भी नया है और हम सब गाने वाले ग्रुप भी नया है, इसलिए क्षमा कीजिएगा, एक बार अभिनंदन फिर भी कर लें।
समापन नहीं ये शुभारंभ है, प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।
जब तलक बीत जाती नहीं रात,
जब तलक हो न जाता सुखल रात है,
तब तलक साथ चलने का अनुबंध है,
तब तलक साथ चलने का अनुबंध है।
ये सहाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।
इसके खातिर बनी है ये प्रभु योजना,
मूल्य आध्यात्म की हो पुनर्स्थापना,
इसके खातिर बनी है ये प्रभु योजना।
आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है,
आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है,
होना निश्चित ही भारत का उत्कर्ष है,
होना निश्चित ही भारत का उत्कर्ष है।
हर हृदय में आनंद आनंद है,
ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।
परिवार प्रभु पलकों में देखिए,
वादियों में झलक मनोहर देखिए,
प्यारा परिवार प्रभु पलकों में देखिए।
आती आठ स्वर्णिम जहाँ की सुने,
आती आठ स्वर्णिम जहाँ की सुने,
मुस्कुराहट वो अधूरों पर देखिए,
मुस्कुराहट वो अधूरों पर देखिए।
विश्व गुरु होगा भारत प्रकाश स्तंभ है,
ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।
कलाकार ये दैवी संस्कृति से दैवी संसार, ये
कल को आकार देंगे कलाकार ये दैवी संस्कृति।
संस्कृति से दैवी संस्कार ये
आते रहिए यूं ही मिलते रहिए सदा
आते रहिए यूं ही मिलते रहिए सदा बांटते रहिए मां की संपदा बांटते रहिए सम्मान की संपदा इसमें ही तो प्रभु प्रेम मकरंद है ये समापन नहीं ये शुभारंभ है प्रिय बधाई की वेला समारंभ है ये समापन नहीं ये शुभारंभ है प्रिय बधाई की वेला समारंभ है ये समापन नहीं ये शुभारंभ है
जब तलक बीत जाती नहीं रात है जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है
तब तलक साथ चलने का अनुबंध है तब तलक साथ चलने का अनुबंध है प्रिय बधाई की बेला समारंभ है ये समापन नहीं ये शुभारंभ है
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी एंड हमारे विवेक भाई जी आपने बहुत थोड़े टाइम में इस गीत को बनाया भी है और हम सबके सामने अपने मधुर स्वरों में परोसा भी है और हमारे दिल के गहराई तक उसे पहुंचाया है यही मैं कहूंगी और आपने अपने गीतों में कहा ये समापन नहीं बरोबर है नए जीवन की एक शुरुआत होगी हम सभी आज से नए जीवन की शुरुआत करेंगे मैं आलोक जी से निवेदन करूंगी कृपया आप अगर सामने हो तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें डॉक्टर बलराम गुप्ता जी से भी मैं निवेदन करूंगी आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें आलोक शुक्ला जी बलराम गुप्ता जी अब हम बहनों से निवेदन करूंगी कृपया आप सम्मानीय मेहमान जी का स्वागत करें इस प्रोग्राम के शुक्ला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिन्हें सुनना चाहेंगे वो है हमारी आदरणीय प्यारी मीठी ममता मही बहने कृपया मंच पर उपस्थित मेहमानों का स्वागत करेंगे तालियों के साथ जरूर दें हम आलोक शुक्ला जी का स्वागत हुआ धन्यवाद अभी हम जिनकी और अपने कानों को और अपने मन को सुनकर बहुत गदगद होते हैं हर्षित होते हैं और आपने अभी तक जिन्हें सुना वो है हमारी आदरणीय मीठी प्यारी चंद्रिका दीदी जी चंद्रिका दीदी जी के लिए क्या कहे आप सभी को उनका परिचय तो मिल ही गया परिचय के यूं ही मोहताज नहीं है किंतु उनका परिचय उनकी मुस्कान है और उनकी जो एक्टिविटीज आप देख रहे सवेरे से लेकर के तो आप भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति है दीदी जी दीदी जी इस विंग के अध्यक्षा है और बहुत सुंदर रीति से हम सबकी पालना करती है राजयोग मेडिटेशन भारतीय संस्कृति के बहुत दिव्य संस्कारों से हम सभी को भरती है और दीदी जी चंद्रमा की तरह शीतल है दीदी जी इस विंग की ही नहीं बल्कि यूथ विंग के भी आप अध्यक्षा है दोनों पार्ट और साथ साथ हमारे अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन को भी संभालते हैं इतना सारा व्याप आप संभालते हुए हमेशा मैं आपको लाइट माइट और मुस्कुराती हुई देखती हूँ यही राजयोग का प्रमाण पत्र है दीदी जी के लिए मैं दो लाइनें कहूंगी आदरणीय दीदी जी, जैसे आपका नाम चंद्रिका जी है, ऐसे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसी प्रकार दिखता है जिस प्रकार लाखों सितारों के बीच चमकता हुआ चांद दिखता है। दीदी जी, आपका चेहरा चमकता हुआ लाखों सितारों के साथ जैसे चंद्रमा दिखता है, ऐसे सारे ईश्वरी परिवार के साथ, हम सभी चाननियों के साथ आप चमकता हुआ एक बड़ा सितारा दिखते हैं। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी के लिए हम कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या कहे, कहना पॉसिबल नहीं है। तो हम सुनते हैं आदरणीय दीदी जी के आशीर्वचन। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी।
ओम शांति। पिछले चार दिनों से आप हम सभी यहां परमात्मा छत्र छाया में उपस्थित हैं। कुछ महीनों से ही आप सभी को यहां का बुलाने का आयोजन हो रहा था और वो दिन आ भी गए। हम सभी ने साथ में मिलकर के इतने सुंदर विषय को लेकर के पैनल भी किया, पार्लियामेंट भी की, शिविर भी किया, कला संस्कृति के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों को भी देखा और आप हम सभी बहुत ही प्रफुल्लित हुए हैं, बहुत ही खुश हुए हैं। सही है तो ताली बजा दो। अब व्हाट इज नेक्स्ट, जो मंच पर मेरे साथ बैठे हुए हैं वो तो सभी जिम्मेवार है ही हैं, क्योंकि मंच से बोला जाता है, उनको मन से करना भी पड़ता है। तो मंचस्थ महानुभाव इस जिम्मेवारी की श्रृंखला में बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको हम तालियों से अभिवादन कर ले। लेकिन साथ साथ सभा में जो भी हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के कमिटी मेंबर्स, कोर कमिटी मेंबर्स, हर जोन सब जोन के रिस्पॉन्सिबल जो भी यहां हैं, इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग से हमने एक जिम्मेवारी का ताज अपने सिर पर पहना है और वो ये है कि कला संस्कृति विंग के द्वारा ये जो प्रेम शांति सद्भावना के मूल्य हैं जिनको परिवार तक पहुंचाना है और परिवारों के अंदर एक सद्भावना की ज्योत जगाना है, तो उसके लिए मैं ये अनुरोध करूंगी कि हर एक व्यक्ति अपने दिल के अंदर ये सोचे कि कम से कम मैं कितने दीपकों को जला सकता हूं। इस संदेश को आप अपने परिवार तक ले जाओ, अपनी सोसाइटी तक ले जाओ, अपनी ऑफिस तक ले जाओ, अपने फ्रेंड सर्कल तक ले जाओ, अपने बृहद बड़े परिवार तक ले जाओ। उसके लिए यहां से आपको एक शुभ संकल्प ही करना होगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों को, और उसकी एक लिस्ट यहां से बना के जाओ, मैं ये ईश्वरीय संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। जब आप ये लिस्ट यहाँ बनाएंगे तो जिनके नाम आप लिखेंगे ना कागज में, यहाँ से वायरलेस की तरह उसके पास मैसेज पहुंचेगा, आपका सटल वाइब्रेशन और उनके मन में कहां ना कहां आपकी याद की वाइब्रेशंस जाएगी। तो जिस घड़ी आप इस बात को लेकर के उन तक जाएंगे, वो आपकी बात को बहुत प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। तो आपको मन बनाना पड़ेगा, अपने दिल के अंदर एक भावना को जताना पड़ेगा कि मुझे जो मिला है वो मुझे देना है। हम भगवान के बच्चे, दाता के बच्चे हैं, और दाता का काम है देना। तो सबसे पहले जो आपको मिला है उसके लिए एक बार दिल से परमात्मा को शुक्रिया करेंगे कि मुझे अनजान को आप यहां अपने पास ले आए और मेरे भाग्य को इतना ज्यादा उजागर कर दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और दूसरा, मैं यहां से जाकर के इतने इतने लोगों को ये ईश्वरीय संदेश अवश्य दूंगा। तीसरी बात, स्वयं के अंदर जो परिवर्तन का संकल्प करना है वो भी लिख के ले जाना है। आज सुबह परमात्मा के महावाक्य हम सुन रहे थे। परमात्मा ने हम सभी को एक ड्रिल करने लिए कहा, और फिर ये ड्रिल करने लिए कहा कि दिन में हर घंटे में केवल 5 सेकंड, और कर सको तो 5 मिनट करना। वो ड्रिल क्या करने के लिए कहा, क्योंकि जो राजयोगी हैं उनों का जीवन काफी हद तक शुद्ध, पवित्र, सात्विक, नियमबद्ध बना हुआ है। अभी केवल मन के संकल्पों की गति को नियमबद्ध चलने के लिए परमात्मा ने आज एक एक्सरसाइज दिया कि आप अपने 5 स्वरूपों को याद करो और हर घंटे याद करो। वो 5 स्वरूप क्या बताएं? पहला, आप एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। जब आत्मा परमधाम से इस सृष्टि पर पहली बार आई तब वो देवता के रूप में थी। तो मैं एक दिव्य आत्मा हूं, देवात्मा हूं, अपने देवत्व को याद करूं। फिर जैसे जैसे हम जन्म बाय जन्म पार्ट प्ले करते गए तो सतयुग और त्रेता दो युगों के बाद हमारा स्वरूप वो भक्तों के लिए पूजनीय बन गया। फिर चौथा है, ये जो हमारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन, और पांचवा है अपना फरिश्ता जीवन। जब हम भगवान के बनते हैं तो फिर हमारी बुद्धि बाकी सब देह के संबंधों के रिश्ते से डिटैच हो जाती है। उस सत्य को जानते हुए कि देह और देह के संबंध नाशवंत हैं और परमात्मा के साथ के सारे रिश्ते वो अविनाशी हैं। भक्ति में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव आदि आदि। तो पांचवा स्वरूप फरिश्ता रूप, हम परमात्मा के मैसेंजर हैं। इन 5 स्वरूपों को याद किया करो। ठीक उसी प्रकार आपको अपना जो संकल्प लिया है कि हम एक राजयोगी बन करके अपने जीवन में श्रेष्ठ नियमों को धारण करेंगे और अपनी कमी कमजोरी अवगुणों को छोड़ते जाएंगे, उसकी भी डेट फिक्स कर लेना कि मैं अपना जीवन कितने समय में बनाना चाहता हूँ। जब ऐसा लक्ष्य लेकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेंगी। मुझे एक आवश्यक मीटिंग के कारण जल्दी जाने का है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा सहित छुट्टी चाहती हूँ। पर आप सबसे मिलकर के मैं बहुत खुश हुई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के सभी सेवा साथियों को, सभी साथी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से प्रस्तुत करती हूँ। और कार्यक्रम की सफलता के लिए दिल से परमात्मा की बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही मीठी मधुर भाषा में हम सभी को याद दिलाई कि हम सभी को यहाँ से ही तैयारी करना है कि हम किन किन को जाकर के आत्मदीपक जगाएंगे, किस किस को ज्ञान देंगे या यहाँ लाएंगे, ये लिस्ट निकाले। तो दीदी जी अवश्य ही दीदी जी की आशा को हम सब पूर्ण करेंगे और अपने दीपक को जगा कर ले जाकर औरों के दीपक जगाएंगे। आदरणीय दीदी जी का पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत अभिनंदन दीदी जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। मीठी ममता मेरी प्यारी, माँ का प्यार और दुलार हम सबके साथ है, तभी तो मिला ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य उपस्थित है हमारी आदरणीय प्रेम दीदी जी। अब आप समझ सकते हैं जिनके नाम में ही प्रेम है। भ्राता बलराम गुप्ता जी हॉल में पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहनों से निवेदन करती हूँ, हमारे भ्राता बलराम जी का आप गुलदस्ता एवं बैज लगाकर स्वागत करें। तालियां बजाते रहें। दूर नहीं थे देर भले हुई, दूर नहीं थे देर भले हुई, आप पधारे तो महफिल में रंगत आई, महफिल में रंगत आई। अब हम जिन्हें सुनने जा रहे हैं वो है हमारे प्रेम दीदी जी। आदरणीय प्रेम दीदी जी, आप इस आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप करनाल से हैं और करनाल सब जोन की भी आप बहुत प्यार से सुचारू रूप से आप संभाल करती हैं, संचालन करती हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मुझे लगता है दिन में आपका नाम न जपे, है ना? किसी को भी समझाते हैं तो कहते प्रेम से बोलो ना, प्रेम से समझाओ ना, प्रेम से सब काम अपने आप हो जाता है, प्रेम की गंगा बनो ना। तो यही वो प्रेम की गंगा हमारी प्रेम बहन जी है जो हम सबके ऊपर ईश्वरीय प्रेम की वर्षा अपने मुखारविंद से करेंगे। आदरणीय प्रेम दीदी जी तालियां बजा सकते हैं दीदी जी के लिए, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए।
ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप प्रेम के सागर शांति के सागर जगत नियंता परमपिता परमात्मा शिव बाबा की प्यारी प्यारी संतान, मंच पर उपस्थित हमारी राजयोगिनी बहने, हमारे अतिथिगण और सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के तीन दिन से हम सभी सबके बहुमूल्य विचार सुन रहे हैं और अपनी 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 कला के माध्यम से भी सभी अपने सुंदर विचारों को, जो इस विषय से रिलेटेड विचार हैं, वो हम सबको दे रहे हैं और हम उन विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं और अपने में समाहित करते जा रहे हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि इन सभी सुने हुए प्रवचनों को, इन सभी सुने हुए बहुमूल्य विचारों को अवश्य ही हम अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा साथ साथ मैं समझती हूँ कि सभी दृढ़ संकल्प करते हुए चल रहे हैं, सभी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं और आज के इस लास्ट सत्र में हम इसी प्लानिंग करने के लिए ही बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं कि जो विषय है इतना सुंदर, आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला, तो किस तरह से इस घोर कलयुग में से हम सब गुजर रहे हैं और परिवारों की स्थिति भी समाज में किस तरह की है वो हम सब के समक्ष पूरी तरह से है, चित्रित है, वर्णन भी सुनते हैं हम सब यदा कदा कि क्या हालत है। पर यहाँ आकर तीन दिन से जो अमूल्य विचार हम सब ने सुने तो अवश्य मन में विश्वास जागृत हुआ होगा आप सभी के कि नहीं, परिवारों में फिर से मूल्यों को स्थापन करना, मूल्यों की वृद्धि करना, मूल्यों की के मूल्यों से अपने परिवार की पालना करना, ये सब हम बहुत सहज भाव से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है उस संस्कृति में तो ये मूल्य रहे ही रहे हैं और हम सभी में ये मूल्य मर्ज रूप में तो हैं, भले इमर्ज रूप में वो मूल्य थोड़ा दूर हो गए हैं, अज्ञानता का पर्दा समक्ष आ गया है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान का प्रकाश हम सबको मिल रहा है तो अवश्य ही वो अंधेरा छट जाएगा और वो मूल्य फिर से हमारे सामने उजागर हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। हल्का थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की बात है, बाकी तो ये मूल्य हमारे अंदर समाहित हैं ही, क्योंकि हमारी जो अनादि संस्कृति आदि संस्कृति रही है वो मूल्यों से ओतप्रोत संस्कृति रही है। हमारी अनादि संस्कृति कहें तो हमारे जो सोल के कोर वैल्यूज हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, 7 वैल्यूज। तो क्योंकि आत्मा सतो गुणी है, ऐसा कहा जाता है, 7 गुणों की पुंज है आत्मा। और फिर अपने आदि संस्कृति को अगर हम देखें तो हम सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक रहे हैं। केवल उन गुणों को इमर्ज करना अर्थात स्मृति में बार बार लाना और उसके स्मृति स्वरूप बनने की सिर्फ आवश्यकता है। तो खुद स्मृति स्वरूप बनकर के आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, भगवान के सामने आप सभी उनके अमूल्य हीरे और रत्न हैं, जिनको इतनी बड़ी इतने बड़े भारत में से चुन के आप सभी को यहाँ पर उन्होंने बुलाया है, तो अवश्य ही आप सभी VIPs, IPs हैं, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं भगवान के। तो अपनी अपनी कला के माध्यम से यही जो विषय हमारे सामने है मूल्यों को उजागर करने का, तो अपनी अपनी कला के माध्यम से हम समाज के अंदर, परिवारों में अपनी अपनी कला के हिसाब से सबके सामने हम रख सकते हैं। जैसे आपने देखा 3 स्किट इसी जो है टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर प्रदर्शित की गई, सबके सामने रखी, हमारे भाई बहनों ने बहुत ही सुंदर अभ्यास और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आप सभी के समक्ष रखी कि मूल्यों का परिवार में होना कितना जरूरी है। मूल्य अगर होंगे तो हमारा परिवार संयुक्त परिवार होगा, संगठित परिवार होगा, एक मत परिवार होगा, शांत परिवार होगा, औरों के लिए सैंपल और एग्जाम्पल होगा। खुद तो हम सुखी और शांत रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन दूसरों के सामने भी सैंपल और एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी भाई बहने आप सब कलाकार आए हैं भारत के कोने कोने से, कोई कविता के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, कोई ड्रामा के माध्यम से, कोई अपनी स्किट के माध्यम से इस विषय को पिरो करके, संजो करके, तो जाके समाज में जगह जगह पर सबके सामने रखेंगे। जैसे आप और अपने अनेक प्रकार के विषयों पर गीत संगीत कविताएं या स्किट ड्रामा आदि बनाते हैं, तो ये भी एक बहुत सुंदर विषय है, क्योंकि हम सभी परिवार की इकाई हैं, एक एक से मिलकर परिवार बनता है। तो इसलिए एक ही अगर अपने लिए परिवर्तन की बात सोच ले, दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे अपने परिवार को संगठित करने में ऐसा सहयोग देना है कि सारी धुरी मेरे इर्द गिर्द घूम जाएगी और सभी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अगर घर में अच्छे संस्कारों वाला है तो वो परिवार कितना सभ्य सुशील सुंदर दिव्य परिवार बन जाता है, और एक परिवार के अंदर कोई अटपटे संस्कारों वाला या असुरी संस्कारों वाली आत्मा आ जाती है तो वही घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। तो एक एक का कितना इम्पोर्टेंस है, एक एक का कितना महत्व है, अगर उस एक के महत्व को भी हम समझ लें, अर्थात जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत ही सुंदर स्लोगन आप सभी भी यदा कदा सुनते होंगे और यहाँ भी सुना है आपने, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना, सेल्फ। दूसरों को तो हर कोई बदलना चाहता है, वो बदले तो मैं बदलूं, दूसरा भी ऐसा करे तो मैं बदलूं, थोड़ा तो वो करे तो थोड़ा मैं करूं, नहीं, मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन करना है, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, मैं बदलूंगा तो विश्व बदलेगा। तो ऐसा अपने को जो है सैंपल रखना है। दूसरी बात कि हमारी संस्कृति दैवी संस्कृति, जैसे आदरणीय दीदी जी हमें बताकर गए हैं, हमारी संस्कृति दैवी संस्कृति, दातापन की संस्कृति, देने की संस्कृति, अपनत्व की संस्कृति, मिलनसारिता की संस्कृति, ये संस्कृति रही है। तो इसलिए सदा भाव देना देना और देना, बस लेने का कभी सोचे नहीं, वो दे तो मैं दूं कभी सोचे नहीं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं देवी देवता, तो हम ही देवी देवता थे सतयुग त्रेता में, तो हमारा हाथ कैसे था, या तो ऐसे वरदानी हाथ, हमेशा देवी देवताओं का ऐसे हाथ दिखाया जाता है वरदानी हाथ, या तो आप देखते हैं लक्ष्मी जी का ऐसे हाथ होता है, मतलब जो समृद्धि है वो आपको मिल रही है देने की, ऐसा हाथ कभी नहीं होता। तो हम सदा देने का भाव अगर रखेंगे मन में तो बिल्कुल हमारे परिवारों के अंदर एक ऐसा सुंदर समन्वय और ऐसा सुंदर प्रेम और एकता का वातावरण बन जाएगा, क्योंकि हम देवता रहे हैं और देवता बनना है, हम लेवता नहीं लेकिन देवता हैं। लेकिन कलयुग में आकर के सिर्फ लेवता बन गए, कोई मुझे मान दे, शान दे, रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, सुविधा दे, साधन दे, कुछ दे दे, ऐसा हाथ होता है लेने वाला, तो इसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, भिखारी कहते हैं, मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। परंतु हम तो देवता रहे हैं और फिर देवता बनना है, तो इसलिए देने की भावना। एक छोटा सा एक मिनट का एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि एक बार इंद्र देव ने ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया देवताओं और असुरों के लिए। तो पहले जो है वो असुरों की बारी आई, तो उन्होंने क्या किया, उनके सामने भर भर के पूरे बड़े बड़े थाल रख दिए गए लड्डुओं के, परंतु कंडीशन ये रखी गई कि ऐसे अपनी कोहनी को कोई भी मोड़ेगा नहीं। अब मुक्त की तरफ ले जाने के लिए तो मोड़ना ही पड़ता है ऐसे करके, तो कोई भी मोड़ेगा नहीं, लेकिन सीधे हाथ से उठाओ और खाओ, ऐसा करना है। अब जो असुर थे ऐसे दो पंक्तियों में बैठे हुए थे आमने सामने, तो लड्डुओं की परात रखी थी, अब वो समझ नहीं पाए करें तो करें क्या, उन्होंने ऐसे लड्डू उछालें और अपना मुख ऊपर खोलें, तो कोई लड्डू नाक पे गिरे, कोई आंख पे गिरे, कोई मुंह पे गिरे, और गिर गिर के फूटते गए लड्डू, कोई भी एक लड्डू भी कोई असुर खा नहीं पाया। फिर देवताओं का नंबर आया, तो उनके सामने भी सेम पोजीशन थी, भर भर के थालियां लड्डुओं की रखी गई, आमने सामने बैठे हुए थे, परंतु उनको भी अपनी कोहनी को ऐसे मोड़ना नहीं था। अब उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने क्योंकि उनको देने के संस्कार हैं देवताओं में, है ना, वो वृत्ति है देने की, दातापन की, तो इजी गोइंग, कोई कठिनाई नहीं। बस ऐसे लड्डू उठाया, उसने सामने वाले के मुंह में डाल दिया, सामने वाले ने उठाया, अपने सामने वाले के ऐसे मुंह में डाल दिया, तो सब पूरे आराम से सबने लड्डुओं को खा करके अपना पेट भरा। तो आप समझ सकते हैं ये अंतर है आसुरीयता में और दिव्यता में। तो दिव्यता अर्थात देने, आपने ताली नहीं बजाई, इतनी सुंदर है बात कि देने के भाव में हम भी भरपूर, सामने वाला भी भरपूर। तो हम ऐसा ही अपनी दातापन की भावना और फिर अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ये देने की भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए, है? ये नहीं वो दे तो मैं दूं, ऐसा नहीं, अनकंडीशनल हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा, हमारे परिवार के अंदर हमें ये इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, परिवार में हर एक व्यक्ति का, हर एक का अपना महत्व है। जैसे गाड़ी में आप देखते हैं 20 लाख की गाड़ी क्यों ना हो, अगर 100-200 का कोई उसका इंस्ट्रूमेंट पुर्जा छोटा सा खराब हो जाए तो गाड़ी रुक कर खड़ी हो जाती है जब तक वो ठीक ना किया जाए, क्योंकि 100-200 के पुर्जे का अपना महत्व है उस गाड़ी के अंदर, तभी तो लगाया है, अगर जरूरत ना होती तो उसको क्यों लगाया जाता। तो ऐसे ही परिवार में जो वृद्ध होते हैं वो छत्र छाया के रूप में अपनी सकाश, अपनी शुभ भावना, दिल की दुआएं, प्यार, इस चीज से अपने छोटे सबको सींचते हैं। वो पूर्वज होते हैं, घर के बड़े होते हैं, अपना टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ अपने छोटों को दे दे करके जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो खुशी मिलती है, अपने ऊपर लगाने से उनको नहीं मिलती है। और फिर देखिए, जो घर में छोटा सा बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा होता है, वो जब घर में किलकारियां मारता है, खुश होता है, है ना, तो सभी परिवार के सदस्य, चाहे कोई ऐसे सरकमस्टांस, परेशानी या कोई समस्या भी घर में आई हो, पर वो छोटा सा बच्चा ऐसे घर के वातावरण को लाइट बना के रखता है, सारे खुश होते हैं उसको देख देख के, प्यारी प्यारी बातें करते हैं छोटे से बच्चे के साथ, उसका अपना महत्व है। तो आजकल के समय में जो है इस चीज का महत्व ना समझने के कारण वो अपनी सास को ब्लेम कर रही है, सास अपनी बहू को ब्लेम कर रही है ना, तो आपस में सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे रहते हैं, इनकी वजह से सब परेशानी है, इनकी वजह से सब अव्यवस्था हो रही है, इस तरह से एक दूसरे को करते रहते हैं। लेकिन नहीं, सभी की शुभ भावना होगी, सभी का प्यार होगा, एकमत होने का दृढ़ लक्ष्य होगा, तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। तो ये भी एक मिनट की एक कहानी, क्योंकि एग्जाम्पल से बात को हम बहुत अच्छा और जल्दी समझते हैं। तो किस तरह से पांचों उंगलियों में भी कहते एक बार सद्भावना इनकी खत्म हो गई, प्यार खत्म हो गया, तो लड़ने लगी, कहने लगी, एक कहती मैं बड़ी, दूसरी कहती मैं बड़ी, तीसरी कहती मैं बड़ी। तो किसी ने पूछा कैसे बड़ी, लॉजिक से बताओ कैसे बड़ी, तो इसने बताया मैं बड़ा इसलिए हूं अंगूठा, क्योंकि जब लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी इधर से उधर करनी होती है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता तो ये थंब लगा करके लाखों की प्रॉपर्टी इधर से इधर कर दी जाती है। दूसरा फिर इस उंगली से पूछा, कहती मैं तो बड़ी हूं ना, मैं इशारा परमात्मा की तरफ करती हूँ, कोई और उंगली नहीं करती, भगवान एक है और वो ऊपर है। तीसरी कहती प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, देखो मैं तो सबसे बड़ी नजर ही आ रही हूं। फिर इस उंगली से पूछा तो इसने कहा, देखिए किसी पर ग्रहचारी आती है तो इसी अंगूठी के, इसी उंगली के अंदर अंगूठी पहनते हैं, पंडित लोग, ज्योतिषी लोग इसके अंदर अंगूठी पहनने का देते हैं ताकि आप शांत रह सको। और फिर शुभ कार्य के लिए जब तिलक दिया जाता है तो इसी अंगुली से दिया जाता है, भगवान जी को भी लगाते हैं इसी। और इससे पूछा, आप तो हुई छोटी सी, आप कैसे कह सकती हो? बोली नहीं, मैं कैसे छोटी हूं, देखिए जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो कौन सी उंगली ने सहयोग दिया, यही उंगली दिखाते हैं, आप चित्र में भी देखते हैं ना। तो चलिए, सबने अपना अपना लॉजिक बताया और समझ में भी आया कि वास्तव में हर एक अपने आप में बड़ी है। तब
किसी समझदार व्यक्ति से पूछा गया कि अब कैसे निर्णय करें कि इनमें कौन बड़ा, क्योंकि इनकी तो सद्भावना ही खत्म हो गई है। तो बूंदी मंगाई गई, छोटी छोटी बूंदी प्रात के अंदर, और कहा गया एक एक अंगुली अकेली लड्डू बनाएगी, बाकी कोई सी अंगुली सहयोग नहीं देगी। अब बताइए एक अंगुली लड्डू बना सकती है? बना सकती है? तो कहा कि बनाओ, लेकिन कोई नहीं बना सकी। फिर कहा पांचों मिलके लड्डू बनाओ, तो पांचों ने मिलके फटाफट लड्डू बन गया, है ना। तो यही भाव है कि परिवार के अंदर भी एक दूसरे का महत्व समझें, संगठित रहें, तो ही हर बात में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर बिखरे रहेंगे, विघटित रहेंगे, एकमत नहीं रहेंगे, तो बाहर लोग भी हमारा नाजायज फायदा कहां ना कहां उठाएंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें हम सब ने यहां पर जो सीखी हैं तीन दिन में, तो अवश्य मैं समझती हूं आप अपने ऊपर तो अप्लाई करेंगे ही, लेकिन दूसरों को भी जाकर के ये परमात्मा संदेश और वैल्यूज की बात जरूर बताएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारे भ्राता दिनेश शर्मा जी जो कि कवि हैं, बैठे हैं सामने, रात्रि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उनमें इन्होंने अपनी कविता रखी थी। पिछले साल भी आप आए थे, लेकिन इस बार आप तीन नए साथियों को लेकर आए हैं, ताली तो बजाइए इनके लिए। तो जरूर इनके मन में आए थे तो समझ में आया कि ये कितना अच्छा स्थान है, कितना ज्ञान वर्धन का स्थान है, कितना मूल्यों की वृद्धि करने की हमारी मानसिक वृत्ति यहाँ तैयार होती है। तो और भी अपने साथियों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इसी तरह से आप सब भी जा रहे हैं यहाँ से एक सुंदर लक्ष्य को लेकर के। जैसा हमारे भ्राता सतीश जी ने कहा कि सिर्फ ये जो सत्र है लास्ट सत्र नहीं कहेंगे, विदाई का नहीं, लेकिन ये बधाई का है, क्योंकि अब आप परमपिता परमात्मा से जुड़ गए हैं, इस ईश्वरीय बेहद के परिवार से जुड़ गए हैं, तो आपकी तो और ही आगे समझिए कि और प्रमोशन ही हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय प्रेम दीदी जी को। प्रेम दीदी जी ने बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही उदाहरण, बहुत कहानियों के तौर पे, जितना इजी हो सके उतना इजी हम सबको ये मूल्य आधारित और खास सद्भावना भरा परिवार कैसे बनाएं, इसकी शिक्षाएं दी, प्रेम से दी। और इसीलिए प्रेम दीदी है ही प्रेम स्वरूपा। जैसे कहेंगे कि प्रेम दीदी जी आप है ज्ञान गुण शक्तियों की खान, आप प्रेम के सागर ज्ञान के सागर की है पहचान। प्रेम के सागर ज्ञान के सागर की है पहचान। आगे जितना भी कहे उतना कम है, लेकिन दीदी जी ने हम सब पर विश्वास डाला है कि हम एक दो का कल्याण करें तो अवश्य हम यहां से जाने के बाद सभी परिवार में अपने और दूसरों को सहयोग की भावना से अपना मैं बड़ा इसे खत्म करके एक सुंदर मैं जो ज्योति बिंदु आत्मा हो इसकी स्मृति में रहकर सबके साथ तालमेल बनाकर रखेंगे और एक सुंदर स्वस्थ और दिव्य गुणों से भरा परिवार बनाएंगे। और आगे जब आएंगे तब उनको भी यहाँ लेके आएंगे, जैसे करनाल से हमारे भ्राता जी लेकर के आइए, उदाहरण भी दीदी ने दिया और प्रैक्टिकल भी है। हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर ऐसे कलाकार को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। वैसे प्रेम दीदी जी के लिए फिर से एक बार तालियां हो जाएं। आपने हमारी को बहुत सुंदर शुभ भावनाएं दी। अब आगे हम जिन्हें बुलाएंगे वो है हमारी बहन ज्योति खंडेलवाल जी। आप अपना अनुभव हमें सुनाएंगे। आप एक नृत्यांगना है, आप तबला वादक भी हैं, आप रंगकर्मी लेखिका एवं शिक्षाविद है। बनारस एवं लखनऊ घराने की परंपरा से आप जुड़ी ज्योति जी ने कथक कला के संरक्षण संवर्धन और प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आप एक नृत्य कला से भरपूर कथक केंद्र की संस्थापक एवं निर्देशक है तथा संगीत साधना पुस्तक की लेखिका भी है। एमए, एमपीए, एमफिल, ऐसे यूजीसी नेट एवं प्रभाकर जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यताओं से संपन्न ज्योति जी ने वर्षों तक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में कथक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी और देश विदेश के विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान करती रही। उन्होंने भारत के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। बहन ज्योति जी ने, आप तालियां बजा सकते हैं। आप स्वयं अनेक नृत्य समारोह एवं कला संवादों का सफल आयोजन किया है तथा सामाजिक जागरूकता अभियानों से भी सक्रिय रूप से आप जुड़ी रही है। कला, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको नृत्य कला भूषण, नारी शक्ति सम्मान, विदुषी महिला सम्मान, मीरा सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। समर्पण, सृजनशीलता, अनुशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति आपके निष्ठा है। आप देश की अग्रणी कथक गुरुओं में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। तो बहन खंडेलवार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन के साथ मैं आपको आग्रह करती हूँ कि आप 3 दिन यहाँ सुना, यहाँ के वातावरण को आपने अनुभव किया, उस फीलिंग को हम सबके सम्मुख रखेंगे। बहन खंडेलवार जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी कलाकारों के परम कलाकार शिव बाबा की ये सुंदर परिकल्पना ज्ञान सरोवर, इसके शांत और पवित्र वातावरण में हम सभी कल को आकार देने वाले कलाकारों का समागम बहुत ही अद्भुत और अनुपम रहा। मंच पर और सभागार में उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमारी मीठी दीदियों और भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अभी चंद्रिका दीदी मेरे पास थी और मुझसे पूछ रही थी कि आप यहाँ कब आए, तो इस वातावरण में हम ऐसे खो गए, मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कब से यहाँ आई हूँ, कितने दिन हो गए, तो मुझे याद करना पड़ा, तो मैंने कुछ याद नहीं आया। मैंने कहा दीदी जब से ये सम्मेलन शुरू हुआ है मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उद्घाटन सत्र में मैंने और मेरी जो शिष्याएं आई हैं हम लोगों ने एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया था। तो ऐसा वातावरण है कि हम यही भूल जा रहे हैं हम कितने दिन से हैं, हम क्या हैं। नृत्य के माध्यम से मैं ईदगाह आगरा सेंटर से जुड़ी हूँ। वहाँ अश्विना दीदी का मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर यहाँ आने का दिया। हमारी कीर्ति बहन आई हुई है हमारी गाइड बनके, तो उन्होंने इस परिवार से, बाबा के इतने बड़े परिवार से मुझे मिलवाया। और मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ नए अपने स्टूडेंट को लेकर आऊँ। मेरे संग मेरे आगरा की बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर अमिता त्रिपाठी जी भी आई हैं, तो हमेशा रहता है कोशिश कि कुछ नए लोगों को जोड़ें। और यदि इनमें से इन बच्चों के या दीदी आई हैं तो उनमें से कुछ भी बाबा की सीख लेके यदि जा रहे हैं तो शायद ये मेरी बाबा के प्रति यही सच्ची सेवा हो सकती है कि कुछ भी हम यहाँ से सीख कर जाते हैं और जो आगे समाज में हम फैलाते हैं। इन 3 दिनों में मुझे लगा जैसे हम सुबह सबसे उठते ही सबसे पहला काम करते हैं अपने फोन को चार्ज करते हैं, और दिन भर हम ऑफिस जाते हैं, शूटिंग पे जाते हैं, स्टूडियो जा रहे हैं या जो भी अपने कार्य क्षेत्र है वहां जा रहे हैं, और दिन भर निश्चित रहते हैं कि फोन हमारा चार्ज है, हमारे मैसेज आएंगे, कॉल आएगा तो हमें सब प्राप्त होते रहेंगे। उसी प्रकार ऐसा सम्मेलन, ऐसा योग, ऐसा राजयोग हमको लगता है कि साल भर के लिए हमारी मानसिक और आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा की बैटरी को फुल चार्ज कर दिया है। और अब हम अपने क्षेत्र पे जाएंगे और साल भर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जैसा भी प्रेम दीदी ने कहा कि हम लेखन के माध्यम से, स्किट के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उस सकारात्मक ऊर्जा को समाज में फैलाएंगे। तो हम सभी कलाकारों का शायद ये दायित्व बन जाता है कि हम अपने कला के माध्यम से इन विषयों को लें, और बहुत से ले भी रहे होंगे क्योंकि हम सभी कलाकार अपने सामाजिक बुराइयों को जब तब अपने कला के माध्यम से समाज में प्रदर्शित करते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम बनेगा, हम समाज में इन मूल्यों को फैलाने का काम करेंगे। और जितनी मैंने मुरलियां सुनी हैं, क्योंकि समय पूरा नहीं मैं सुन पाती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ रविवार की रविवार में जाऊं, कभी कभी मन में जैसे क्रोध आ जाता है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, किसी के प्रति क्रोध आ गया, कुछ आ गया कि आज हम उससे ये कहेंगे, उसने हमसे ऐसा कहा, जैसा अभी दीदी ने बताया कि होता है। तो मेरा अपना अनुभव है, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे जो भी मुरली सुनते होंगे सबका अनुभव होगा कि उस मुरली में आपकी उस बुराई का समाधान बाबा तुरंत देते हैं। और मैं ये आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि ये मुरली क्या बाबा ने मेरे लिए ही लिखी थी? आज मैं ये क्रोध में आई थी कि मैं ऐसा करूंगी, मैं उससे ऐसा कह दूंगी, और फिर बाबा की बातों से मुझे लगता है अरे नहीं, ये तो कहना ही नहीं है हमें। तो वो आपके विकारों का नाश, क्योंकि हम साधारण समाज में रहते हैं, अच्छाई बुराई दोनों मिलती हैं, कभी कभी हम हो जाते हैं, तो मुरली सारी समस्याओं का समाधान मुरली में है। आप सुनिए, देखिए, समझिए, सब समस्याओं का समाधान है। मैं जब ध्यान योग में बाबा के कमरे में जाती हूँ, तो जैसा भी दीदी ने, चंद्रिका दीदी ने इससे पहले वाले सेशन में कहा था कि आंख बंद करके ध्यान योग नहीं है, आंख खोल के ही ध्यान करना है। और अक्सर मैं जैसे रचनाएं अपनी नृत्य की करती हूँ, कोई तिहाई नहीं बन रही है, कोई शीर्षक मुझे अपना टॉपिक का समझ में नहीं आ रहा है जो मैं लेख लिख रही हूँ, तो जैसे ही मैं बाबा के कब्र में बैठती हूँ और सारी समस्याओं, सारे जीवन की इच्छाओं से अपने को केंद्रित करके एक जगह ध्यान लगाती हूँ, और जब मैं आंख ऐसे करती हूँ, इधर उठती हूँ वहां से, आप विश्वास मानिए मेरी तिहाई कंप्लीट हो जाती है और मुझे वो टॉपिक का, लेख का जो टॉपिक है वो मिल जाता है। ये मेरे अपने ही अनुभव हैं, हो जिन्होंने महसूस किया होगा, जो करते होंगे वो लगेंगे, और जो अभी नए नए हैं नहीं समझ पा रहे होंगे तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, मैंने महसूस स्वयं किया है। तो ये संगीत का अध्यात्म से पुराना संबंध है। आज के आधुनिक युग में जरूर संगीत थोड़ा सा उससे विमुख हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा आध्यात्मिकता ही है। और जब से मैं जुड़ी हूँ और मैंने अपने नृत्य संगीत में आध्यात्मिकता को जोड़ा है, तो हमारा स्तर एक नहीं, तीन चार स्तर ऊपर हमारा संगीत हो जाता है। मैं जब भी अपनी प्रस्तुति देती हूँ, जैसे यहाँ भी मैंने अपने दो डांसेस प्रस्तुत किए, दोनों बाबा के थे, कहीं भी करती हूँ तो मेरा अपना चाहे डेढ़ घंटे का शो हो, दो घंटे का हो, उसमें दो तीन डांसेस तो बाबा के होते ही हैं, और सब मुझसे साथ में पूछते हैं कि ये आप ये गीत लाती कहाँ से हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे आज के परिवेश को, हो सकता है बहुत पुराने लिखे हों, अभी लिखे हों, तो सब लोग मुझसे कहते हैं कि ये गाना बिल्कुल रिलेट कर रहा है आज की दृष्टि में, आप कहाँ से संगीत चूज करती हैं, कहाँ से लाती हैं। अभी इसी फरवरी में हमारे आगरा में ताज महोत्सव होता है, तो हमने शिव जी का गाना प्रस्तुत किया, लाल लाल रंग, तो शायद अश्विना दीदी ने, मैं उनको अपने वीडियोस भेजती हूँ कि आज हमने ये करा, तो दीदी ने शायद आर कल्चर विंग्स में कहीं पे ग्रुप में डाला होगा, और तुरंत वहां से मैसेज आया कि आप इनकी कोरियोग्राफर और गुरु को हमारे आर्ट कल्चर विंग्स में लेकर आइए। इतनी छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें प्रस्तुतियां दी, और आज देखिए आप सबके बाबा के आशीर्वाद से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो मैं यही अपनी अश्विना दीदी को और ईदगाह के सभी भाई बहनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे वो भेजते हैं यहाँ पर, और मैं बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होकर समाज में अपना दायित्व इस तरह से करने की कोशिश करती हूँ। बाबा का आशीर्वाद मेरे पास है, हमेशा रहेगा, और मैं इसी से वापस जा रही हूँ कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को समाज में फैलाऊं। और मेरे संग जितने लोग आए हैं, मोनिश्का है, प्रज्ञा है, चांदनी है, आरती है, मेरे युगल भी बैठे हुए हैं, दीदी बैठी हैं, तो इनमें अगर थोड़ा सा भी बीज यहाँ से लेके ये लोग जाते हैं तो ये मेरी सच्ची सेवा है। वो लोग खड़े हो जाएं बच्चे, मोनिश्का, प्रज्ञा, चांदनी, आरती, मेरे युगल भी, इन्होंने गीत गाया था आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, और प्रोफेसर अमिता त्रिपाठी जी आए हैं। तो मेरा यही रहता है कि मैं हर साल यहाँ आऊं और कुछ नए लोगों को लाऊं, यहाँ से जोड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं गायक नहीं हूँ, मैं तो नृत्यांगना हूँ, कथा गुरु हूँ, और मैंने दो प्रस्तुतियां यहाँ दी थी, पल पल बहती कल कल कहती, बच्चों ने कल के सांस्कृतिक, परसों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में और उद्घाटन में भी बच्चों ने किया था, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें। और सतीश भाई का बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और हम लोग उस पे नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आदरणीय डॉक्टर, सॉरी, ज्योति जी के लिए। जैसे इनका नाम है ऐसा ही इन्होंने अपना अनुभव सुनाया, ऐसा ही उनका काम है। तो तालियां हो जाए। आपने सचमुच परमात्मा ज्ञान के द्वारा अपनी ज्योति को जगाकर, आपने जिन जिन की ज्योति जगाई उन्हें भी यहाँ आप लेकर आई हैं, तो आप सचमुच एक अनुभवी खान बन गए यहाँ की। और आपने इन्हीं को अभी लाया और जाएंगे, और आप बहुत सभी को लेकर के आएंगे। आपको बहुत उमंग उत्साह है और आपका अनुभव सुनने लायक है, और मैं समझती हूँ ऐसा ही अनुभव आप सभी का भी होगा। और खास जिसे शिव बाबा की मुरली, परमात्मा महावाक्य कहे जाते हैं, इसका आपने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। जो हमारा है वो आपने भी अनुभव किया है, और अवश्य आप सभी भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान समय परमपिता शिव परमात्मा भगवान इस धरा पर आकर हम सर्व मनुष्य आत्माओं को वो परम कलाकार, वो अपनी पहचान देकर अपनी ज्योति को जगा रहा है। और इसीलिए हम जागे जग को जगाए, यही नारा लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे। जाने का आपका भी मन नहीं होगा, छुट्टी देने का हमारा भी मन नहीं है। भ्राता सतीश जी ने कहा ही था कि यह समापन सत्र नहीं, ये तो हम सभी का नए जीवन का आरंभ होगा। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मकता को हम अपने साथ लेकर के जाएंगे और समाज में, परिवार में सर्व को बांटते रहेंगे। जितना बांटेंगे खजाने उतने ही बढ़ते जाएंगे, कम कभी नहीं होंगे, ये अनुभव आप अवश्य करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ज्योति बहन जी का। और हम अब हमारे सामने आ रहे हैं डॉक्टर बलराम गुप्ता जी। डॉक्टर बलराम जी, आप नेशनल चेयरपर्सन है राष्ट्रीय कन्यादान ट्रस्ट के, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासभा, आप सहकारी संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली, साथ में ये आप बॉलीवुड कलाकार भी हैं, हिंदी फिल्म मेरा राज, मेरा राम राज्य, नई क्रांति, शेर गुर्जर एवं मासूम कातिल वेब सीरीज कमरा नंबर 104 में एक एक्टर के तौर पर आप काम कर चुके हैं, और वर्तमान में भी कई प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं। आप बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन भी हैं, और आप बिजनेसमैन होने के नाते से आपने भी यहाँ से बहुत कुछ लिया होगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो तो पता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जहाँ से जो जो अच्छा अच्छा माल मिलता है वो माल का संग्रह करके सभी तक पहुंचाते हैं। तो मैं समझती हूँ आपने भी यहाँ से परमात्मा गुण ज्ञान शक्तियों का माल, रत्न हीरे अपनी झोली में संजय होंगे, और अवश्य ही आप यहाँ से लेकर जाकर के सभी को बांटेंगे। आप अपना अनुभव सुनाएंगे। इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। हम सुनते हैं भ्राता बलराम जी को।
आदरणीय राजयोगी बहने एवं भाई, सम्मानित अतिथिगण एवं उपस्थित सभी, मेरा सबको नमन, ओम शांति। मुझे यहाँ पर आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी प्रेमलता, मेरी बेटी आशी गुप्ता, वह भी मेरे साथ आई और आप सबके बीच यहाँ जो स्नेह, जो यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही प्रेरणादायक लगी हमें। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूनम दीदी, जो कि हमारा शालीमार बाग दिल्ली का सेंटर के इंचार्ज हैं, और दिनेश भाई, दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें, दिनेश जी ने तो 6 महीने से मुझे हर 4th दिन फोन करते थे, बलराम जी समय निकाल के रखना, चलना है आपको। और अकस्मात कुछ ऐसा रहा कि हमने 15 दिन पहले टिकटें करवा ली, बल्कि हम परिवार में 5 लोग हैं, मेरी 2 बेटी, 1 बेटा, मैं और पत्नी, तो हम 5ों की टिकट थी आने की, लेकिन वो हमने 5ों टिकट कैंसिल करवा दी क्योंकि मेरी बिटिया एडवोकेट है वेदिका गुप्ता, वो बीमार हो गई, तो हमने कैंसिल करवा दी। फिर दिनेश जी को मैंने समस्या बताई तो दिनेश जी बोले कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। फिर दीदी का फोन आया, पूनम दीदी का, कि बलराम जी नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा, मैंने आपका वहां नाम दिया हुआ है। तो मैंने फिर अपनी बिटिया को बोल के तत्काल की टिकट करवा ली अपनी अकेले की। फिर अच्छा, बिटिया तो मेरी 1 दिन पहले दीदी के साथ आ गई थी, उसका यहाँ परफॉर्मेंस थी, कविताएं थी यहाँ स्टेज पे उसकी, तो मेरी टिकट भी हो गई। 24 को बिटिया निकली वहां से, 25 को मैं निकला। फिर मेरी बिटिया बोली कि मम्मी मैं अब ठीक हूं, आप भी चले जाओ। तो समस्या आई कि टिकट का क्या होगा, तो मैं थोड़ा निर्भीक व्यक्ति हूं, मैं घबराता कम हूं, मैं देखी जाएगी, चलो। मैंने मिसेज को लिया, मैंने सोचा कि जनरल टिकट ले लूंगा और टीटी को पटा लूंगा लेकिन वहां जाके कुली ने बताया कि इस ट्रेन में जनरल बोगी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, मैं कोच में बैठा, मैंने टीटी को ढूंढा, नहीं मिला। मैं सोचा वो मुझे पकड़े, उससे पहले मैं उसको पकड़ लूं, तो वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने जो अटेंडेंट होते हैं, जो ब्लैंकेट वगैरह में देते हैं, उनको मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक ही टिकट है और दूसरी टिकट मुझे चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, उतरूंगा नहीं मैं। तो टीटी साहब आए, बोले आपका मैं 2 नंबर। बोला, मैं कह, मेरी पत्नी, इनका टिकट नहीं है और इनको बर्थ चाहिए, मेहरबानी हो तो अच्छी बात है, नहीं मैं 1 बेड एडजस्ट हो जाएंगे हम, और जो सेवा हो आप बता देना, जो शुल्क हो। तो बोला मैं चक्कर मार के आता हूँ और कोई बर्थ है तो मैं देखता हूँ। आया, बड़े प्यार से बोला, आप भी गुप्ता है, मैं भी गुप्ता हूँ। मैं, आप गुप्ता हो? बोले मैं साहू हूँ। अच्छा, मैं कह, जो मोदी जी हैं साहू? बोले हाँ। तो बोला आपको ना 52 नंबर दिए हैं, तो हमने पहले ही 1 नंबर वाले को सेट कर रखा था, अगर हमें जो बर्थ मिलेगी आपको उसमें जाना होगा। वो बेचारा चला गया, हम दोनों आराम से यहाँ पर आए। दीदी ने हमारी गाड़ी की व्यवस्था यहाँ कर रखी थी, गोविंद भाई है, हमें यहाँ तक पहुंचाया उन्होंने। और उसके बाद यहाँ आकर हम सब कुछ भूल गए। मैं वहां बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, मैं भी, मेरे साथ जलज भाई बैठे सामने, पार्षद हैं हैदरपुर वार्ड से, पड़ोसी वार्ड से हमारे। हम यहाँ आके हमने एक भी फोन नहीं किया दिल्ली में, उधर से आगे अटेंड कर लिया, अलग बात है। तो यहाँ का जो वायुमंडल है, जो भी यहाँ का वातावरण है, वो बहुत प्रेरणादायी है। और मन तो अब भी नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, आज की टिकट है हमारी। और कल तो दिनेश जी ने और दीदी ने हमारा आर्ट ऑफ क्या है वो, पीस ऑफ माइंड में मेरा भी साक्षात्कार, मेरी बिटिया का भी करवाया, और आधे घंटे का साक्षात्कार था, बहुत अच्छा लगा। और मैं दोबारा भी आऊंगा और बस धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बलराम भाई साहब का, आपका अनुभव तो बहुत अच्छा रहा।
अच्छा, वो जो मेरा आने का टीटी का अनुभव था ना, जो वहां सीखा मैंने, वो भी 5 मिनट पहले काम भी आया। अभी दिनेश भाई मुझे 2 मिनट के लिए ले गए थे साइड में, तो हमारी 2 बहनें हैं, तो वो उनको इलाहाबाद गई थी पेपर दिलवाने बच्चे का, तो उनकी टिकट कानपुर तक कंफर्म थी, तो इलाहाबाद से कानपुर तक टीटी ने कुछ नहीं बोला उनको, बोला कोई बात नहीं देख लेंगे। जैसे ही उनकी टिकट वहां खत्म हुई तो उनसे डिमांड करने लग गया, तो मैंने इन्होंने मुझे बताया, मेरी बात कराई 10 मिनट पहले, मैं कहता हूँ मंच में हूँगा फोन नहीं उठा पाऊंगा मैं, फिर भी कोई बात नहीं दिनेश जी को आप फोन कर लेना। दिनेश जी के पास फोन आया, मैं साइड में गया, अपना परिचय दिया मैंने, तो बोले सर फिर आप बताओ क्या करना है, मैं केवल माफी देनी और कुछ नहीं करना। बोला ठीक है सर, और उन्होंने माफी दे दी, नहीं तो 3-3 हजार रुपये दोनों से मांग रहा था अभी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भ्राता बलराम जी का। कहते ही है जहां चाह होती है वहां राह अपने आप निकल कर आती है, तो आपने हिम्मत का एक कदम बढ़ाया और भगवान ने आपको मदद की, और वो अनुभव आपने सुनाया कि कैसे ट्रेन में आपको बर्थ भी मिल गया, साथ में आप भी गुप्ता जी और वो भी गुप्ता जी, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में गुप्त ही गुप्त यानी अंदर ही अंदर हमें परमात्मा की स्मृति में रहकर सब कार्यवार करने हैं, तो कार्य में कुशलता आएगी, कार्य में ईश्वर की मदद मिलेगी और कार्य सहज हो जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाए। सभा में अक्रम जी खान बैठे हो तो थोड़ा आपको दयाल भाई जी का बुलावा है, कृपया आप यहां से प्रस्थान करके उन्हें अवश्य मिले, वो रिसेप्शन में आपको मिलेंगे। मोहम्मद खान जी रिसेप्शन में जाकर तुरंत दयाल भाई जी से मिले, ऐसा उनका मैसेज है। हम एक से बढ़कर एक अनुभवी रत्न यहाँ, जिन्होंने रत्नों को लूटा है, अनुभव किया, ऐसे बैठे हैं। इनमें से हमारे सामने और एक महानुभव है जिनका नाम है आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला जी को हम अब बुलाना चाहेंगे। भ्राता आलोक शुक्ला जी, आप भारतीय रंगमंच, साहित्य, टेलीविजन, पत्रकारिता जगत का एक पत्रकारिता जगत का एक प्रतिष्ठान नाम है। वर्ष 1986 में रीवा मध्य प्रदेश से रंगमंच की शुरुआत करने के बाद आपने लगभग 50 नाटकों के 600 से अधिक मंचन, एक दर्जन से अधिक नाटकों का निर्देशन, 16 मंचे एवं 6 रेडियो नाटकों का लेखन तथा 9 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपने प्रसिद्ध रंगकर्मिया हबीब तनवीर, सागर सरहदी, शिवदास गोड़के, अनमोल पालेकर, बासु चटर्जी, सत्यदेव दुबे जैसे दिगंजों के साथ कार्य किया तथा अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे कलाकारों के साथ भी आपने अभिनय किया है। तालियां हो जाए, आप तालियां बजाते रहिएगा, इनका बायोडाटा तो बड़ा है। पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आपने स्पेस टीवी न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, भारत आज और महुआ टीवी, प्रज्ञा चैनल, मितबा टीवी तथा महुआ खबर जैसे संस्थानों में लेखक, निर्देशक और पत्रकार के रूप में कार्य किया है। साथ ही मुंबई के नानावटी कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी आप रहे। आपने अनेक चर्चित टीवी धारावाहिकों एवं फिल्मों जैसे सास भी कभी बहू थी। शांति, स्वाभिमान, सीआईडी, कृष्णा अर्जुन, कुमकुम और ऑनर आदि में अभिनय किया है। जून 2020 में भी जीबीएस यानी गिलियन बारे सिंड्रोम से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने आपने अपने रंगमंच को नहीं छोड़ा। वर्ष 2024 में लगभग 4 वर्षों बाद अपने लिखे और निर्देशित नाटक उसके साथ के माध्यम से सफल कर मंच वापसी कर उन्होंने अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया। तालियां हो जाए। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में ख्याबों के साथ रंग, पंचरंग, अजीब दास्ता और एक अन्य नाटक, ऐसे कई नाटके और कई प्रस्तुतियां बॉलीवुड में आपने की हैं। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए और आपका अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर आज आपने 3 दिवसीय राज्यों के बारे में सुना। कला संस्कृति प्रभाग के इस कार्य में आप यहाँ आए, आपने जो अनुभव किया वो अनुभव हम सबके सम्मुख आप रखेंगे। भ्राता आलोक शुक्ला जी।
ओम शांति। धन्यवाद कुंदा दीदी जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए, बड़ा परिचय देने के लिए। बहुत कुशल मन संचालन कर रही हैं। बलराम जी, प्रेम दीदी जी, ज्योति खंडेलवाल जी, चंद्रिका दीदी जी, पूनम दीदी जी, नूतन बहन जी और सतीश भाई जी, इनके बारे में जब मैं सुनता रहता हूँ, मैं दोबारा आने का सौभाग्य मिला है मुझे। इतने सारे गीत रच लिए हैं तो मुझे लगता है कि ये परिचय बहुत छोटा हो जाता है फिर तो। इतना मतलब कितने सालों तक बीके रहना और फिर गीतों की संरचना करते रहना, तो मेरे मैं बहुत पूज्य हैं सारे लोग मेरे लिए, दीदियां भाई जी। इतना इतना सफर तय करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। और दोबारा आया हूँ, मैं बता चुका हूँ। और पहले मेरे साथ 4 थे, अभी समय 6 हैं, 6 लोग आए हैं, मतलब मुझे जोड़कर अगली बार शायद 8 लोग हो जाएं। तो प्रताप जी हैं, डॉली जी हैं, मेरी पत्नी भी है, नीतू हैं, चंचल जी जो कल कविता पढ़ी है वो इस बार नई आई हैं, और क्या कहते हैं माता जी हैं हमारी। हाँ, खड़े हो जाइए आप लोग। ये बीके भी हैं हाथरस में, आप आई हैं तो ये नई है इस बार। चंचल जी कविता पढ़ी, नीतू जी हमारे पिछले साल ही साथ में पत्नी है हमारी, और डॉली जी, प्रताप जी तो पिछली बार 4 थे, इस बार 6 और अगली बार शायद। ये अनुभव मतलब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, नाटक का आदमी हूँ, कि पिछली बार 4 थे, इस बार 6 और अगले और शायद 8 हो जाए। लेकिन यहाँ के अनुभव के अलावा सबसे बड़ा अनुभव ये है कि यहाँ नीतू बहन जी हैं वो, और प्रकाश भाई भी, के प्रकाश भाई जो रीवा में है वो मुझे लगातार, हालांकि मैं दिल्ली में ज्यादातर रहता हूँ लेकिन वो लगातार जो है तो कोशिश करते रहते हैं। पूनम दीदी से भी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, दिल्ली में हूँ। तो मैं अपनी बात को कहने के लिए 4-5 लाइन की छोटी सी कविता है, उसके बाद छोटी सी बात कहूंगा, अपनी छोटी सी बात को थोड़ा एक बड़ा विस्तार देने की कोशिश करूंगा। सोचता हूँ ईश्वर कहीं तो होगा, सोचता हूं ईश्वर कहीं तो होगा, शायद बनारस और काबा के शांत तटों पर, जहां पंडों मौलवियों का शोर ना होगा, वो समाधिस्थ होगा धुएं और कोलाहल से दूर, वो समाधिस्थ होगा धुएं और कोलाहल से दूर, उन एकाकी पलों में जब मौन भाषा होगी संवादों की, जहां मौन भाषा होगी संवादों की, ईश्वर बात कर रहा होगा ठूंठ और यंत्र ग्रहों की अनुपस्थिति में, जहां सुरभि बिखेरती अटखेलियां कर रही होगी चांदनी, जहां सुरभ बिखेरती अटखेलियां कर रही होगी चांदनी, तो हरियाले झुरमुटों में के बीच कहीं ईश्वर ले रहा होगा सांसें, तो हरियाले झुरमुटों के बीच कहीं ईश्वर ले रहा होगा सांसें, दुग्ध धवल हिमाच्छत एकांत शिखरों में वो कर रहा होगा विश्राम, चुन्नू मुन्नू बबलू डब्लू की निश्चल मुस्कान भरी शैतानियों में आशीर्वाद दे रहा होगा ईश्वर, किंतु नहीं मिले मुझे ये शांत तट, नहीं मिले ये शांत तट, मौन एकांत एकांत शिखर हरियाले झुरमुटे मुस्कान भरी शैतानिया, तो क्या ईश्वर के घरों को खत्म कर दिया हमने, तो क्या ईश्वर के घरों को खत्म कर दिया हमने, कर दिया बेघर उसे, पर ईश्वर भटक नहीं सकता, पर ईश्वर भटक नहीं सकता, नहीं मानता मैं, वो छुपा होगा वहीं कहीं, वो छुपा होगा वहीं कहीं और झांकता होगा अंतर द्वारों से, वो छुपा होगा वहीं कहीं, वो छाकता होगा अंतर द्वारों से, वो निकल आएगा, वो निकल आएगा, घूमेगा खुले आकाश तले। विलंब है तो बस उसके घरों को समझने की, उसे अपना मानने की, उसे अपना मानने की। ये वो एकांत शिखर जो मैं ढूंढता रहा, यहां आके मिले मुझे। यहां हर झुरमुटे में लगा कि कहीं ईश्वर सांस ही ले रहा है, हर दीदी के प्रवचन में लगा कि हाँ ईश्वर सांस ही ले रहा है, हर यहां कहीं भी आप निकल जाइए लग रहा कि हाँ ये हम दिल्ली बॉम्बे के लोग जो है दिल्ली बॉम्बे में नहीं ढूंढ पाते हैं, हमें इतनी दूर आना पड़ता है, लेकिन यहां दीदियां और भाई जो उस एकांत को अपने शब्दों से पिरोते हैं, इस एकांत की जो व्याख्या करते हैं, तो ये श्री बाबा का ही आशीर्वाद है। कितना बड़ा सब चल रहा है, सब कैसे चल रहा है, वो उनका ही आशीर्वाद है। और हम लोग भी सब छोड़ छाड़ के, पता नहीं क्या एक अंदर एक आग रहती है कि चलिए चलते हैं। तो ये एकांत जिस दिन आप अपने शहर में ढूंढ लेंगे, अपने अंतर द्वार अपने आप खोल लेंगे, उस अंतर द्वार को खोलने की चाबी यहां है, बस यहां आने की आवश्यकता है, वो अंतर द्वार अपने आप खुल जाएंगे। मेरा अपना अनुभव है, मैं दोबारा आया हूं, श्री बाबा चाहेंगे तो शायद तिबारा भी आऊंगा, और भी लोग साथ में आएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वो एकांत मुझे यहां मिला, मुझे दिखा। आपने भी अनुभव किया होगा, कहीं आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मकता आपको शहर में नहीं मिलती है, यहां भूल जाते हैं। दो तीन दिन तो कम से कम कुछ भी नहीं, आपको फोन भी आपको लगता है क्यों फोन आ गया, आपको कहीं इच्छा भी फोन करने की नहीं होती है, और ये ऐसा वातावरण है कि आपको कहीं कुछ वैमनस्य जैसा कुछ दिखता नहीं। आता भी है तो एक पल के लिए वो खत्म हो जाता है, मान लीजिए कुछ बातचीत होती है अनुभवी बात, वो खत्म हो जाता अपने आप ही वातावरण में। इतनी ताकत है, इतना सौहार्द्र है, ये सकारात्मकता यहां से जो मिली है उसको ले जाने की आवश्यकता तो है, मुझे भी है, हम सबको है। और जैसे सेंटर्स हैं, जैसे दीदी ने बताया कि चंद्रिका दीदी उस समय बात करी थी, अभी मर नहीं है, और दीदी जो बताती हैं कि आपके अपने आसपास सेंटर हैं। मैं पिछले साल आया, सेंटर की बात की, लेकिन सेंटर जा नहीं पाया, मैं अपराधी हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद दुआ मुझे सेंटर जाना ही चाहिए और उस एकांत को तलाशने। हाँ नहीं, मैंने वही बोला, वही शब्द है। हाँ नहीं, वही विवेक जी वहां थे, अभी यहाँ विवेक जी ने फोन आया तो मुझे लगा रही वो तो अच्छा आप लक्ष्मीनगर से बोल रहे हैं, वहां से निर्माण विहार के सेंटर से। नहीं मैं यहीं से बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा आपका नंबर सेव है, तो मैं कन्फेस कर रहा हूँ, तो अपने आप को कन्फेस तो करना ही चाहिए कि मुझे लगा कि अब मैं आप मतलब कि लक्ष्मीनगर तो ऐसा तो नहीं है कि मैं विनोद नगर में रहता हूँ, तो लक्ष्मीनगर तो बहुत नजदीकी है मुझसे, मैं जा सकता हूँ वहां, बेशक जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। तो अब दोबारा शायद ये एक मेरे अंदर एक चीज आई है कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा, तो निश्चित रूप से जाऊंगा मैं वहां सेंटर में। और वो जो एकांत जो यहाँ जो सकारात्मकता है जो आप सब लिए जा रहे हैं, आप जैसे मैं भी लिए जा रहा हूं, तो वो सब जो है तो उसको लेकर वहां जो सेंटर मिले उस सेंटर में आप कभी, आप भी कभी चाहिए, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और समय निकालिए। समय निकलता नहीं है, एक बड़ी विचित्र बात है, जो मैं बॉम्बे में 15 साल रहा हूं, दिल्ली में 15 साल रहा हूं, रीवा में 15 साल रहा, तो रीवा में समय निकल आता था, बॉम्बे में नहीं निकलता था। और फिर जो बॉम्बे में रहते हैं वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से ज्यादा बॉम्बे में समय नहीं निकलता, पर समय आपके पास बहुत होता है, बॉम्बे में समय बहुत होता है पर समय निकलता नहीं है, और दिल्ली में आप समय निकालना नहीं चाहते, बस अपने में व्यस्त रहते हैं। हर शहर की अपना नेचर होता है। तो मैं तो नाटक वाला हूँ, हम लोग तो पागल कहलाए जाते हैं फिल्म जो करते हैं, तो हम लोग तो निकल जाते हैं, तो नाटक के रिहर्सल में हमको परमात्मा मिल जाता है कि नाटक मंचन कर लिया उसी में परमात्मा मिल गया। तो ये हम लोग की अपनी एक अलग दुनिया होती है। तो लिखते हैं, लिखते लिखने ही ने मुझे जिंदा किया। मैं तो 2 साल तक 2.5 साल तक बिस्तर में ही मतलब लेटा पड़ा था, वो एकांत था, मेडिटेशन था, बी के शिवानी जी को सुनता था, श्री श्री रविशंकर जी को सुनता था, मतलब बिस्तर में ही लेट लेटे कुछ लिखता था, लिखने की कोशिश करता था। तो मेरी मैं उस आ जाता है फ्लो में, मैं याद नहीं करना चाहता। तो मेरी यहाँ पत्नी बैठी हुई है, उन्होंने बहुत सेवा किया। मतलब ये हाल था कि मेरी 3 साल की बच्ची पूछती थी पापा मर गए आप, यही हाल था। मतलब गले के नीचे कोई अंग मेरा चलता नहीं था, और देखते देखते मेरी बच्ची 2.5 साल पौने 1.5 साल से वो 7 साल हो गई, मैं उसे गोद में नहीं उठा पाया और उसको बच्चों क्या समझ में आएगा। लेकिन उस वक्त ने मेरी पत्नी ने संकल्प लिया, उस संकल्प से मैंने संकल्प लिया, लिखने पढ़ने का किया और वो एक मेडिटेशन सुनना शुरुआत की। यहाँ बी के स्वामी जी खूब सुना मैंने, श्री रविशंकर जी को खूब सुना मैंने, और इस तरह में पढ़े और क्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। या फिर फिजियोथेरेपिस्ट आता था तो एक्सरसाइज करवाता था, या हम एक्सरसाइज करवा लेते थे। तो वो मतलब मुझे तो दूसरा जीवन ही मिला है, कहीं इस एकांत ने दिया है। वो एकांत जो मैंने अपने अंदर पैदा किया, उस एकांत को मतलब कि बस विकसित करने की जरूरत है। लेकिन हम अकेले नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने तो गाइडेड मेडिटेशन भी किया हुआ है, डॉक्टर न्यूटन हैदराबाद के, उनके साथ मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी, लेकिन फिर छूट गया वो। छूटता बहुत है, बताया ना, हमारे अपने आप को हम 1 घंटा नहीं दे पाते हैं। इससे बड़ी तकलीफ आपके लिए कुछ नहीं है और इस संसार के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आप को 1 घंटा नहीं देते तो संसार में सिर्फ और सिर्फ आप अव्यवस्था ही फैलाते हैं, परिवार में भी और संसार में भी आप खुद ही उसे अव्यवस्थित करते हैं जब वो 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकालते। 1 घंटा निकालिए, परिवार भी व्यवस्थित हो जाएगा, संसार भी व्यवस्थित हो जाएगा। भैया कि आप सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये मजाक की बात है ही नहीं कि ये कह दिया जाए कि आप सुधरेंगे। ये लोग ना स्लोगन ने बोल दिया आप सुधरेंगे, नहीं नहीं साहब, वाकई में आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम सब लोग इंसान हैं, हम सब में कमियां हैं, उन कमियों को जो क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं ना, उसको कब मतलब मुझे सबसे अच्छा सेशन माफ कीजिए लगता है सुबह वाला, 6:30 से जो 7:30-8 बजे होता है, मुझे लगता है जीवन मिल गया मुझे। मतलब मुझे लगता है कैसे भी मैं चले, सूरज भाई जी को सुनता हूँ, दादियों को सुनता हूँ, मुझे लगता है अच्छा ये चल चल चलते दौड़ते हैं। मतलब इतना रसो साधन आपकी जो क्लीनिंग होती है, शहर मेट्रो शहर आपकी क्लीनिंग नहीं करते हैं। वो शोर आपके पास, मैंने बोला ना, शोर हर जगह भरा हुआ है, आपको एकांत चाहिए। जैसे ही एकांत में बैठेंगे, बैठना सीखेंगे, सीखना पड़ेगा एकांत में बैठना। एकांत में बैठिए, 2 मिनट शुरू कीजिए, 4 मिनट शुरू कीजिए, 5 मिनट शुरुआत कीजिए, 5 मिनट ही रोज करिए तो पहले घर के एकांत में बैठिए। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको लगेगा कि तो एक ऐसी सकारात्मकता, ऐसी कामनेस आपके अंदर आएगी जिसकी कल्पना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो एक ही निवेदन है, मैं अपने आप से भी निवेदन कर रहा होता हूँ, थिएटर वाले कहते हैं अगर हम सिखा रहे हैं तो हम सीख भी रहे होते हैं उस समय, तो मैं सीख भी रहा हूँ आपको, सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ अनुभव अपने। थोड़ा समय निकालिए, सेंटर जा सकते हैं जाइए, बहुत अच्छी बात है। बावजूद इसके नहीं जा पा रहे हैं, मान लीजिए किसी क्षण अपने घर में कोई कोना तलाश लीजिए, थोड़ी देर बैठ लीजिए, वो थोड़ी देर बढ़ाते चले जाइए। निश्चित मानिए, मैं जब मर गया था और जिंदा हो गया, 2-4 हाथ मदद के लिए आई जाएंगे, मेरी पत्नी की आई, प्रताप जी बैठे हैं, सब लोग ले जाते थे, बहुत सारे मित्र सर्कल है, सब उठा के ले जाते थे, डेड बॉडी की तरह मुझे उठा के ले जाते थे हॉस्पिटल, सब बिस्तर में ही होता था, पत्नी साफ करती थी। लेकिन वो एकांत जो है मैंने अपने अंदर से तलाशा, बीमारी को सोचना बंद कर दिया, शोर को सोचना बंद कर दीजिए। शोर के बीच में एकांत तलाशना सबसे बड़ी कठिन बात होती है, शोर के बीच में मंत्र पढ़ना, पूजा करना, 4 लोग घंटी बजा रहे हैं फिर पूजा कर रहे हैं, वो एकांत चाहिए आपको। और मैं जिया हुआ सत्य बता रहा हूं, कोई दूसरा सत्य नहीं बता रहा हूं, कि उस गंभीर बीमारी में एम्स के डॉक्टर ने देखा था, जब मैं अकेले पहुंचा उसको देखा तो अमसम वेरियंट था मुझे, क्या कहते हैं GBS का, तो वो चौंक गया, उसने बोला आपके साथ, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, बोला कोई नहीं आपके साथ, मैंने कहा नहीं है, तो बोला फिर आपको जरूरत ही नहीं है। इस बीमारी में आदमी एक तो बिस्तर से उठता नहीं है, और उठ जाए तो इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो किसी और साथ के बगैर वो जाता नहीं। अभी भी है, मेरी पत्नी है या कोई साथ में चलता है तो हाथ मेरा पलट फटाक चला जाता है साथ, वो शिकायत जा भी रहती हो पकड़ लेते हो आप उसके, वो मतलब एक उस बीमारी की, वो सिंड्रोम की ये प्रॉब्लम है कि ये बीमारी में आदमी अकेले चल नहीं सकता, जी नहीं सकता इस बीमारी के। लेकिन इसने मुझे कोई एकांत मुझे मिला, मेरा थिएटर मुझे मिला, मुझे लिखने को मिला, ये किताबें वही एकांत की तलाश है। 9 किताबें ये कैसी हो गई मालूम नहीं, लेकिन हो गई, नाटक लिख गए, नाटक कर रहा हूं, वो चल रहा है। आप बढ़िए, एक हाथ आपको कोई ना कोई मदद के लिए मिल जाएगा, बढ़िए तो सही, आप बैठना शुरू कीजिए दो मिनट, तो एक दिन हो सकता है पत्नी आपकी चिल्लाए, बच्चा आपको खींचे, लेकिन एक ही दिन खींचेंगे, दो दिन खींचेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे पापा पगला गए बैठने दो, आप वो पागलपन जारी रखिए, क्योंकि उससे आपको जो कामनेस आएगी, जो परिवार में शांति आएगी, जो आपके आसपास शांति आएगी, वो कहीं नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। भ्राता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं भगवान को मुर्दों में जान डालने वाला, और सचमुच आप उसी की एक प्रतिमूर्ति हैं, कि किस तरह आपने अपने जीवन में फिर से उस हौसले को पाया है जो खोया हुआ था। आपका अनुभव दर्दनाक भी है, प्रेरणा देने वाला भी है। समय का सदुपयोग किया जिसने, समय का सदुपयोग किया जिसने, उसने सब कुछ पाया। खोई हुई जान, खोया हुआ हौसला आपने वापिस लाया और आपको नया जीवन मिला। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और आपने कहा कि हम आए हैं पहले भी और आते रहेंगे। राता जी अवश्य आइएगा। ये प्रभु का है दरबार, ये प्रभु का है दरबार, ये आप ही का तो है घर बार, ये आप ही का तो है घर बार। यहाँ की शोभा अपरंपार, प्रभु मिला, प्रभु का प्यार मिला। आप आते रहे, यहाँ आपका स्वागत है बारंबार, स्वागत है आपका बारंबार। आपने अपने परिवार को भी यहाँ लाया और आपने ऐसा स्वयं में निराला परिवर्तन एकांत में रहकर गंभीर बीमारी में भी अपने आप में लाया। तो सचमुच जब हम अकेले होते हैं तो हमारे साथ वो होता है ऊपर वाला। वैसे कहने में भी कहते हैं कि जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोके आंधी तूफान। तूफान जैसी भयानक बीमारी में भी आप तर गए, संभल गए, सवार गए और आज हम सबके बीच आए दोबारा ऐसी सुंदर जिंदगी पाने के लिए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और आपने ये करके दिखाया। कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं बदलू, सब बदलेंगे। कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते ऐसा कैसा हो सकता है, इतना बड़ा विश्व मेरे अकेले बदलने से थोड़ी बदलेगा। सोसाइटी में जहां तहां हमें ये सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे वो एक बात याद आती है कि एक बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा था। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते उसने एक पन्नी को फाड़ डाला। वो पन्ना फाड़ा, माता आई, गुस्सा हुई। माता ने कहा, ये क्या किया तूने, भारत देश का नक्शा फाड़ दिया। देखा उसने, अरे ये भारत देश का ही क्या, सारे विश्व का नक्शा था। बच्चे को कहा फिर से इसे जोड़ो। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कैसे जोड़ू, कैसे जोड़ू। उसने जहां तहां से प्रयास किया परंतु सफल नहीं हो रहा था। पर उसने उस चिटोरे को फिर से दूसरी तरफ से देखा, उसको हाथ दिखा, पाय दिखा, ऐसा एक एक आर्गन दिखा। तो उसने कहा चलो, भारत या विश्व का नक्शा जोड़ना मुझे तो नहीं आता, लेकिन आदमी को जोड़ना तो जरूर आता है। तो बच्चे ने एक एक चिटोरे को लिया और हाथ पांव सब जोड़ दिया, इंसान बन गया और उसी पन्ने को पलटाया तो विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा बन गया है। तो हमारा भी जीवन इस राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इसी तरह हमारे जीवन में बदलाव हम ला सकते हैं। हम अकेले नहीं, हमारे साथ में एक सुंदर विचार है, सकारात्मक विचार है। जहां तहां ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के 140 देशों में शाखा है, आपने सुना है। भगवान ने अपने शांति दूतों को, सेवारथी को सेवा के लिए आप सबके रखा है। आप अवश्य ही ब्रह्मा कुमारी के जहां से भी आए हैं वहां के या कोई भी सेंटर पर जाकर के अपने जीवन को इसी तरह से राजयोग से, जैसे भाई साहब ने ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी, एकांत में रहे, यहां आकर गए थे, इसका भी साथ आपको मिला और इससे आपका जीवन बना। तो हम भी अपने जीवन की ज्योति को जगाकर, खुद में परिवर्तन लाकर औरों के भी परिवर्तन के पात्र अवश्य बन सकते हैं। और यही आशा हम सब आपके लिए रखेंगे। तो जोरदार तालियां। और अभी मैं निवेदन करती हूं हमारे आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी, भ्राता आदरणीय सतीश चंद्र भाई जी, आप मुख्यालय संयोजक कला एवं संस्कृति प्रभाग के हैं। आप यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान में समर्पित रूप से 45 वर्ष से अधिक आपने अपने जीवन को इस ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय हेडक्वार्टर में बिताया है। आप हमारे वरिष्ठ दादियों के अंग संग रहे, आपने उनकी सेवाएं की, बहुत सारी शिक्षाएं और प्रेरणाएं आपने उनसे पाई और आप स्वयं में बहुत बड़े कलाकार हैं, एक बहुत अच्छे लेखक है, एक बहुत अच्छे गायक है। आपने अपनी लेखनी से 6000 से अधिक गीतों को लिखा है, आपने गाया भी है और आपके गीतों को बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के गायिकाओं ने, गायक ने स्वर दिए हैं, जैसे कि आशा भोसले जी, सोनू निगम जी आदि आदि। किन किन का मैं नाम लूं, तो सभी के साथ आप जुड़े हैं, आप कलाकारों की सेवा भी करते हैं और आप जब जब हमारे हेडक्वार्टर में जब भी प्रोग्राम होता है, मुझे लगता है एक महीने में 3-3, 4-4 प्रोग्राम होते हैं और आप घंटों में, घंटा भी शायद नहीं लगता होगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो ऐसे घंटों में मिनटों में गीतों की रचना करके आप प्रस्तुति करते, बहुत बड़ी विशेषता, प्रभु की देन है आपको। ऐसे महानुभवों के द्वारा आज हम प्रस्तुति एवं संकल्प लेंगे, इसके लिए मैं आदर पूर्वक निवेदन करती हूँ भ्राता सतीश भाई जी को।
दीदी, मेरा निवेदन था कि ऑडियंस से भी जी, अगर कुछ एक दो कोई अनुभव सुनाना चाहें, शॉर्ट में सुनाएं ताकि औरों को भी अवसर मिल पाए, तो कोई सुनाना चाहेंगे, कोई आना चाहे, आइए। जरा माइक दें, हाँ यहाँ से भी दे सकते हैं,
शॉर्ट में 2 मिनट में मंच पर आकर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं आप जी। इसके बाद हम भ्राता जी को सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, सबको मेरा नमस्कार। मैं अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ आने के लिए बहुत कोशिश करी। मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे साथ भी मेरे दोस्त आए हैं, मेरी मिसिज भी आई है, उनकी मिसिज भी आई है, तो हमें लोगों ने कहा था कि भाई वहाँ जाना मत, सबको भाई बहन बना देंगे वहाँ, लेकिन यहाँ आके तो ऐसे हमारा अनुभव नहीं है। पहले मेरे को कहा गया कि आप वकीलों के डेपुटेशन में चले जाओ, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती थी वकीलों के, मैं नहीं आ सका था। फिर हमने बहन जी से रिक्वेस्ट करी कि हमें आप किसी और उसमें डाल दो, तो अब ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमारे को इस प्रोग्राम में डाला और हम आए और हमने अपना ये जो 4-5 दिन बिताए हैं, मैं कह नहीं सकता कितनी शांति। लोगों के फोन भी आए, अब भी आ रहे हैं कि अपना हमारा काम करना है, ये करना। मैं कह भैया अब तो बाद में मिलेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अपने बहन जी का और करनाल में जो सेंटर चलाती है हमारी प्रेम बहन जी, इन्होंने मेरे का सौभाग्य दिया। हम कोशिश करेंगे अगले साल भी आएंगे और अपने साथ कोई 2-4 आदमी और साथ लेके आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
ओम शांति। मैं बीके शैलेंद्र कुमार, मैं मोतिहारी बिहार से हूँ और मैं एक तबला का कहिए विद्यार्थी भी हूँ और मैंने बनारस में इसकी शिक्षा ली है, जो मोतिहारी से जाने में मुझे 18 घंटे लगते थे सीखने के लिए, एक बार जाना और आना। उस समय हम लोग के परिवार में संगीत के लिए कोई स्थान नहीं था, मैं छुपके से जाता था और मैं ऑलरेडी मैं ग्रेजुएट था, लेकिन रास्ते में मुझे बाबा ने कैसे मुझे अकल दिया कि एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए एक विद्यार्थी ने कह दिया, मैं तुरंत ले लिया और उस नाम पे मैंने संगीत की शिक्षा ली और गार्जियन मेरा तब जाना जब मैंने प्रभाकर कर लिया और मेरा स्टेज परफॉर्मेंस हुआ तब। तो मेरे गुरु इतने अच्छे मिले, पंडित छोटेलाल मिश्रा बनारस यूनिवर्सिटी में, वो तबले के प्रोफेसर थे, उनकी एक शिक्षा जो मुझे इस संस्था में आने पर प्राप्त हुई कि मेरा 3:30 उठने का समय हमेशा बरकरार रह गया, चार से पांच मैं रियाज करता था, उसके बाद खाना खुद बना के मैं क्लास करने जाता था। और यहाँ आने के बाद मुझे तो पता ही नहीं चला था कि हाँ ये नया चीज हमको करना है, और इतनी बड़ी शक्ति मुझे मिल गई कि मैं गुरुजी के नाम से मैं एक महाविद्यालय खोला हूँ, जहाँ मैं विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं लेता हूँ, केवल मेंटेनेंस चार्ज लेता हूँ। और यही सुन करके सतीश भाई जी ने 2023 में मुझे लाइफ टाइम मेंबर बनाया था, और तब से मेरा है कि किसी तरह मैं जून में आर्ट एंड कल्चर विंग के कार्यक्रम में आऊंगा। और मैं अब तक मैं कहा था कि हम लोग हैं लाइव प्रोग्राम देने के, तो वह था कि शॉर्ट पीरियड है तो लाइव उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन देखिए बाबा ने चाहा तो इस बार मुझे दोनों दिन बजाने का मौका मिला। मेरी बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ संगत कर दें, मैं किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सुखद अनुभूति है। और मैं अपने कॉलेज के चार स्टाफ को लाया हूँ, और अगली बार मैं आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 विद्यार्थियों को लाऊं, ताकि उनके अंदर कंसंट्रेशन आए, संगीत के माध्यम से कुछ भी करें लेकिन कंसंट्रेशन हो। अब मेरे साथ क्या था, मैं 35 वर्ष स्टेट बैंक की नौकरी किया, रिटायरमेंट हुए मुझे 14 साल हो गए, और रिटायर होते ही मैंने संगीत को अपना लिया और मैं इसी सेवा में हूँ और बाबा के साथ हूँ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम श्रद्धे प्रेम दीदी जी, वो अन्य मंचासीन अन्य दीदियां और महानुभाव और उपस्थित बंधुवर, परम सौभाग्य का विषय था कि वो घड़ी थी, वो क्षण था कि जब मेरे भ्राता नरेंद्र सुखन जी मुझे मिले कि ऐसा कुछ कार्यक्रम बन रहा है, तो माउंट आबू के प्रति आकर्षण मात्र आकर्षण था आने का कि माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र है। और कुछ वकील साथी यह भी कहते थे कि शर्मा जी वहां मत जाना, ये बात सत्य है कि भाई बहन का रिश्ता बन जाएगा, तो वो भय भी था, जबकि यहां उसके सर्वथा विपरीत हुआ कि यहां ऐसा कुछ नहीं था, रादर हम ट्रांसफॉर्म पूर्ण रूप से बहुत चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि यहां आए हैं। बंधुओं का, गुप्ता जी का और शुक्ला जी का अनुभव सुना, तो यह अनुभव और भी भाइयों का हो सकता है, हम अपने साथ और भी साथियों को लाएंगे और उनका कल्याण होगा, ऐसा मैं मानता हूं और पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले दिनों में आगामी वर्ष हम अपने और साथियों को भी लेकर के आएंगे ताकि जन जन का कल्याण हो सके, ऐसी मेरी भावना है। ओम शांति। मैं करनाल में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं, उससे पहले हरियाणा परिवहन विभाग में विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत था, सेवानिवृत्ति के पश्चात अब मैं अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं।
परम आदरणीय दीदी और मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध जन, मैं पवन कुमार हिंदी प्रवक्ता पद से रिटायर हुआ हूं और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, ये मेरा भाग्य था, क्योंकि बाबा के शरण में आकर जो भी मेरे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या और भी जो कमी थी वो दूर करने का अवसर मिला। इसके साथ साथ मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पिछले साल भी आया था, बच्चों को अपना अनुभव सुनाया, तो वो बच्चे भी प्लस टू के बच्चे हैं, तो वो भी जिद कर रहे हैं सर हमें भी यहाँ पर घुमाओ और हमें यहाँ का जो सकारात्मक इतना अच्छा माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है, परमात्मा से जुड़ने का जो अवसर है वो हमें मिले और हम अपने जीवन को और अच्छी तरह बिताएं, क्योंकि वो ज्यादातर लड़कियां हैं और लड़कियां एक नहीं दो परिवार को सफल बनाती हैं, दो परिवारों के जीवन को सफल बनाती है, तो उनकी यही भावना है कि सर हमें यहाँ पर लेकर आए और हम यूथ विंग में जो भी हमारे को मौका मिले और हम इस भावना से जुड़े। मैंने वहाँ अपने स्कूल में बहन जी को बुलाया भी था और उन्होंने हमारे अध्यापकों को, सभी अध्यापकों को सम्मानित भी किया था, तो मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम का, ब्रह्म कुमारी संस्था का हृदय से धन्यवाद करता हूं और इतने अच्छे आयोजन के लिए सभी प्रकार की जो इतनी अच्छी सुविधाएं मिली हैं इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने चरणजीत जी, चरणजीत थे ना, तो आपने इनकी कलाकृति को कल देखा, अभी आप इनका अनुभव भी सुनेंगे। चरणजीत जी।
ओम शांति। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत अच्छा लगा। ये दो शब्द वैसे तो काफी हैं कहने के लिए, अगर ये किसी व्यक्ति के संदर्भ में हो तो आप कह के निकल सकते हैं, लेकिन बात एक संस्थान की हो तो इन दो शब्दों से काम दरअसल चलता नहीं है। इन चार दिनों में जो एक चीज महसूस हुई है वो ये है, मैं जो खुद महसूस करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी हुई है तो वो हुई है हमारी एथिक वैल्यूज की गिरावट। हम बचपन से अपने बच्चे को एक चीज सिखाते हैं कि पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाना कैसे है ये नहीं सिखाते। बस निवेदन मेरा ये है, मैं भी कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करें कि जीवन में जो भी काम करें वो पूरी एथिक वैल्यूज के साथ करें। मान लो मैं कवि सम्मेलन करता हूं तो मेरी कोशिश ये है, पिछले बार भाई दिनेश ने कहा जब मुझसे कि आपको चलना है, तो मैंने कहा मैंने तो पैसे मैं कविता पढ़ता हूं तो यहां आने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, अगर कुछ अच्छे सुनने वाले हैं तो बिना पैसे के भी पढ़ी जा सकती है। बस मैं बहुत ज्यादा, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, हाँ मैं चार पंक्ति सुना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह ये दिन महीने साल पूछेंगे, अभी इन खुशनुमा लम्हात को हम अलविदा कह दें, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे। और जीवन में हमारे में एक चीज आप कभी भी महसूस कीजिएगा कि हमने बहुत सारे वक्तव्य देने के बाद में लगता है कि नहीं यार ये बात जो सबसे महत्वपूर्ण कहनी थी ये तो रही गई। जब मैंने महसूस किया तो मैंने चार पंक्ति लिखी, उसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हया पहने वफा ओढ़े बिछा कर याद सो जाए, हया पहने वफा ओढ़े बिछा कर याद सो जाए, किसी लम्हे के दामन में कोई सपना पिरो जाए, बहुत कुछ मुझको कहना है बहुत कुछ तुमको सुनना है, बहुत कुछ मुझको कहना है बहुत कुछ तुमको सुनना है, चलो फिर यूं करें कुछ देर को खामोश हो जाएं।
बहुत सुंदर राता चरण जी ने अपना अनुभव अपने कवि के द्वारा सुनाया है, कविता के द्वारा। अब हमारे बीच हमारे भ्राता सतीश भाई जी आए हैं और आप सभी को भी रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत देर से बैठे हैं, सभी से निवेदन है कृपया सभी खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ हमारे भ्राता जी हमें जो कहेंगे वो हम सभी कहते रहेंगे।
पिछले 3-4 दिन से आप सब यहां पर आए, मैं तो ये समझता हूं कि केवल हमारे आपके प्रयास से ये काम नहीं हुआ है, आपका आना यहां इससे संभव नहीं हुआ है, ये उस परमात्मा की योजना है, ईश्वरीय योजना है जिसने हम सबको यहां पर आमंत्रित किया है। और हम सबका भी ये प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर न केवल अपने गांव को, स्वयं को, परिवार को, बल्कि विश्व को परिवर्तन करने में अपना महती योगदान दें। और इस संदर्भ में आप आए, आप सबका तो मुझे ऐसा लगता है जो नए नए भाई बहने आए हैं उनका मन करता है कि आपका यहाँ एक नया जन्मदिन मना लिया जाए, अलौकिक जन्मदिन है, क्योंकि माउंट आबू में आना और यहाँ पर परमात्मा की उस कृपा का पान करना, उसमें सहभागी बनना, सुनना और व्यस्त समय से समय निकाल करके आपका यहाँ पर आना बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। हम में से हर भाई बहन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि योजना बहुत बड़ी है विश्व परिवर्तन की, जिसने अपना इसमें योगदान दिया वो तो अहोभाग्य है ही है, लेकिन साथ साथ हमारे और भी आसपास की, जिसे भी आलोक जी बता रहे थे, जो वातावरण बनता है और यहाँ पर आने पर जो वातावरण मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, यहाँ आने पर जो फीलिंग मिलती है वो तो अद्भुत होता है। तो प्रस्तावना पूरे कॉन्फ्रेंस का मैं सुनाना चाहता हूँ और फिर आपसे प्रतिज्ञा भी कराना चाहता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोग एजुकेशन एवं रिसर्च फाउंडेशन के कला संस्कृति प्रभाग द्वारा आबूराज स्थित ज्ञान सरोवर में 25 जून से 29 जून तक आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला विषय पर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के लगभग 250 से भी अधिक कलाकारों ने भाग लिया। सभी कलाकारों ने ऐसे सम्मेलन की महती आवश्यकता पर बल देते हुए सभी सत्रों में ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग से आत्मिक शक्ति का अनुभव किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगारंग प्रस्तुतियां भी प्रदान की। कलाकारों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण एवं पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला हेतु आयोजित इस सम्मेलन में कलाकारों और विद्वत्जनों ने, अनुभवी वक्ताओं ने अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए। आधुनिक संस्कृति में मूल्यों की अहमियत तथा परिवारों को बनाने मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए कलाकारों ने विभिन्न संगोष्ठियों में गहन विचार विमर्श किया। आज सम्मेलन के समापन सत्र में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों एवं गुणों की धारणा के लिए ईश्वरीय योजना को मूर्त रूप देने के लिए हम सभी कलाकार संकल्प लेते हैं। आप हमारे साथ अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएंगे और ये अभी तो इसकी कॉपी नहीं बन पाई है, लेकिन आप मन से संकल्प करें। सारभूत यही है कि हम सब राज्यों का अभ्यास करेंगे, मूल्यों को संवर्धन में पूरा योगदान देंगे, आत्मिक बल प्राप्त करेंगे, सेवा केंद्र पर जाएंगे और साथ में औरों को भी योगदान देकर के परिवारों को मूल्यनिष्ठ बनाएंगे। तो मेरे साथ कहेंगे, मैं परमपिता परमात्मा को याद करते हुए सच्चे हृदय से यह संकल्प लेता हूँ मैं अपने परिवार में प्रेम शांति और सम्मान का वातावरण बनाने का निरंतर प्रयास करूंगा। मैं क्रोध कटुता और अहंकार के स्थान पर धैर्य सहनशीलता और मधुरता को अपनाऊंगी। मैं प्रतिदिन कुछ समय
परिवार के साथ
सार्थक संवाद
सहयोग
और
आत्मीयता के लिए
अवश्य लूंगी। मैं परिवार में वातावरण बनाने के लिए
राजयोग
मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा सकारात्मक प्रकंपन अवश्य फैलाऊंगा। मैं
पारिवारिक
सद्भावना अभियान का
सक्रिय सहभागी बनकर
समाज में
प्रेम
शांति
और एकता का
संदेश प्रसारित करूंगी।
धन्यवाद। ओम शांति। एक बार अपने लिए अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। इन संकल्पों को आप अपने मन में संजो के रखें, रोज सवेरे जब उठें तो एक बार दोहरा लें, हमने संकल्प किया, बैठ जाएं। ये संकल्प जरूर अपने साथ करें ताकि आपको याद भी रहे, क्योंकि जब तक हम किसी बात के लिए संकल्प नहीं करते हैं, दृढ़ता की बेल्ट से अपने आप को बांध नहीं लेते हैं, जब तक दृढ़ता की तीली से कमजोरी के रावण को भस्म नहीं करते हैं, तब तक वो शक्ति नहीं आती। यहाँ पर प्रतिदिन जो राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, हम लोग रोज सवेरे उठकर जो 4 से 4:45 बजे तक मेडिटेशन करते हैं, उसका ही परिणाम है कि आज यहाँ वातावरण बहुत अच्छा बना हुआ है और आप सबका शुभागमन हुआ है। आप सबका एक एक का संकल्प बहुत जबरदस्त है। आप सबके एक एक संकल्प का, एक एक के जीवन का इस ईश्वरीय कार्य में बहुत ही सहयोग, क्योंकि अकेले से काम नहीं होगा। एक छोटा सा एक वृत्तांत बता करके मैं पूरा करता हूँ। कहते हैं कि एक बार एक इमारत में, तालाब के किनारे की एक इमारत में लगी आग लोगों में मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जिससे जो हो सकता था, किसी ने आग पर पानी डाला, किसी ने आग में घिरे हुए लोगों को बाहर निकाला, सबने वो किया। वहीं पर बैठी थी एक चिड़िया, वो भी भर रही थी चोंच में पानी, डाल रही थी आग पर पानी, देख रहा था कौवा। बोला, चिड़िया बहन तू क्या करती है? तू समस्या की सुई से सुई के तू नोक से तू तालाब तू ताले को खोलना चाहती है और पत्थर के बाढ़ से तू पहाड़ तोलना चाहती है। तेरे सुई भर तेरे चोंच भर पानी से आग तो क्या आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। दिया तपाक से जवाब कि भैया मैं जानती हूँ, अपने चोंच भर पानी की क्षमता को भी पहचानती हूँ, पर जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगा हुआ देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शान से लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में शान से लिखा जाएगा, शान से लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ से शुभ संकल्प लेकर जा रहे हैं, ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि परमात्मा की योजना है अपने भाग्य के लिए और अपने यहाँ आने के लिए। मेरी तरफ से और ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से एक बार अभिनंदन और स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरदार हो जाए हमारे भ्राता जी के लिए। बहुत सुंदर उदाहरण आपने हमें दिया है कि जैसे छोटी सी एक जो चिड़िया थी उसने भी प्रयास किया और इतिहास में उसका नाम हुआ, तो हमारा तो अवश्य होने ही वाला है। हम तो उसकी तुलना में बहुत बड़े हैं और हम एक इंसान हैं। तो जरूर आज का ये जो सत्र है, इस सत्र से हमने जो कुछ 3 दिनों में राजयोग के द्वारा जाना है उसको हम अपने साथ लेकर के जाएंगे और राजयोग मेडिटेशन के लिए अपने लिए समय निकालेंगे। यूं तो सबको समय हम देते हैं लेकिन अपने आप को ही भूल जाते हैं। राजयोग अंतर जगत की एक यात्रा है। इस यात्रा पर ले जाने के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी आदरणीय पूनम दीदी जी को। पूनम दीदी जी, आप आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप दिल्ली शालीमार बाग से हैं और जैसे आपका नाम है तो वैसे ही आपका काम है। कहते पूनम की रात में जैसा रहता है प्रकाश, रात होती है लेकिन पूनम की रात में जैसा रहता है प्रकाश, आपने किया है सभी का विकास, आप देते हैं सभी को ज्ञान का प्रकाश, आप कलाकारों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत सारे कलाकारों को दिल्ली से भी लाते हैं और अपने प्रवचनों के द्वारा सभी को प्रेरणाएं देते हैं। ऐसे पूनम दीदी जी हम सबको राज्यों की यात्रा के लिए अनुभव करेंगे और कराएंगे और मैं यही कहूंगी कि राजयोग हम सभी कहीं भी और कभी भी जरूर कर सकेंगे। तो आज थोड़ा सा रसा चाखन हम सबके लिए हो जाए पूनम दीदी जी की ओर से।
ओम शांति। राजयोग के द्वारा रूहानी यात्रा करते हुए प्रभु मिलन मनाने के लिए हम आत्मा की 2 शक्ति मन और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मन के द्वारा हम विचार लेते हैं और बुद्धि के द्वारा उन विचारों को विजुलाइज करते हैं। एकाग्रता की स्थिति बनती जाती है और प्रभु मिलन का अनुभव होते ही स्वयं में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। तो अभी हम अपने ध्यान को चारों ओर से हटाते हुए मस्तक में ब्रकुटी में केंद्रित करते हुए सर्वप्रथम स्वयं को सम्मान देंगे, स्वयं ही स्वयं को सम्मानित करेंगे विशेष स्वमान के द्वारा कि मैं एक महान शक्तिशाली श्रेष्ठ विश्व सेवा पर उपस्थित विश्व का कल्याण करने वाली श्रेष्ठ कलाकार हूँ। ब्रकुटी सिंहासन पर बैठे हुए मैं परम कलाकार की श्रेष्ठ कलाकार स्वयं को देख रही हूँ। मुझ आत्मा से रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें निकल निकल कर मेरे चारों ओर एक प्रभा मंडल ओरा क्रिएट कर रही हैं। मैं देख रही हूँ ज्ञान की नीले रंग की किरणें, सुख की पीले रंग की किरणें, शांति की आसमानी रंग की किरणें, प्रेम की हरे रंग की किरणें, आनंद की जामनी रंग की किरणें, पवित्रता की केसरिया रंग की किरणें और शक्ति की लाल रंग की किरणें, दिव्य प्रकाश निकल निकल कर सबके पास भी पहुंच रहा है। मेरे स्वयं के सूक्ष्म शरीर में प्रवाह करते हुए मेरे शरीर को भी स्वस्थ कर रहा है। मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच भी बना रहा है। रंग बिरंगी दिव्य प्रकाश की किरणों के बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु दिव्य चमकता हुआ सितारा ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान कर्म इंद्रियों का राजा स्वराज्य अधिकारी आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, हाथों से कर्म करती हूँ। कर्म योगी मैं दिव्य सितारा अब इस देह और देह की दुनिया से दूर जाने के लिए स्वयं को इस देह से अलग बाहर में सूक्ष्म शरीर में देख रही हूँ। सूक्ष्म शरीर को ज्ञान योग के पंख लगाकर फरिश्ता बनकर उड़ती जा रही हूँ। देह और देह के संबंध पुराना संसार पांच तत्वों का पीछे छूटता जा रहा है। मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। सूक्ष्म लोक ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी को भी पार करते हुए लाल सुनहरे प्रकाश में तत्व में पहुंच गई हूँ। बिंदु स्वरूप मैं चेतन शक्ति आत्मा परम धाम के लाल सुनहरे प्रकाश में असीम शांति को महसूस करते हुए परम कलाकार की ओर बढ़ती जा रही हूँ। समीप पहुंचकर देख रही हूँ जैसे मैं आत्मा कलाकार बिंदु मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। मेरे मीठे शिव बाबा अनंत गुणों और शक्तियों के भंडार हैं। उनसे मिलन मनाकर मैं असीम आनंद का अनुभव कर रही हूँ, असीम खुशियों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापिस इस साकार जगत की ओर लौट रही हूँ। बीच में ग्रहों को भी शांति के प्रकंपन देते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शांति के प्रकंपन देते हुए जीव आत्माओं को भी शांति के प्रकंपन देते हुए मैं वापिस मस्तक में भ्रकुटी में बैठकर परम कलाकार शिव का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने हमें राजयोग का अभ्यास कराया। इसी अभ्यास को दोहराते हुए इसी अनुभव को हम सभी अपने साथ ले जाएंगे और अपने घर में भी इसका अभ्यास करेंगे और अवश्य ही सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाएंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देकर तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, निरोगी काया युक्त, सभी हंसता हुआ, खेलता हुआ, उमंग उत्साह भरा जीवन जीने की प्रेरणा यहाँ से लेकर के जाएंगे। अभी बहनों को मैं निवेदन करती हूँ कि आदरणीय दीदियों के द्वारा मंचासीन सभी को सर्टिफिकेट एवं प्रभु प्रसाद देवे। सभी तालियां भी बजाते जाएंगे। अंजलि बहन अरोरा अगर बीच में हो सभा में तो अवश्य आए, आप भी अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। अंजलि बहन अरोरा जी, अभी अंतिम प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। कहते अंत भला तो सब भला, तो इसी भलाइयों को अपने जीवन में लेकर जाएंगे। और अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारी बहन नीति बहन, नीति बहन जो कि एक्टिव मेंबर है कला संस्कृति प्रभाग की और आप शाहबाद से है, नीति बहन आप आभार प्रदर्शन करेंगे।
ओम शांति। धीरज का पुल तो पहुंचने ही वाला है, सभी ने बहुत धीरज से, प्रेम से, प्यार से यहां तक अपने आप को संभाला है। आज के समापन सत्र में जो दीप स्वयं जलता है वही औरों को सही राह दिखाता है, जो प्रेम से सबको जोड़ता है वही जीवन को सफल बनाता है। तो सबसे पहले आज के इस दिव्य एवं अविस्मरणीय अवसर पर परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सब के पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारी मीठी दीदियां दादियां तथा सभी उपस्थित छोटे बड़े आईपीस वीआईपीस सभी को मेरा वंदन, सभी को मेरा नमन, और वाणी को विराम नहीं बल्कि कृतज्ञता का स्वर दे रही हूं। जहां बड़ों का आशीष मिलता है, जहां बड़ों का आशीष मिलता है वहां हर कार्य सफल हो जाता है। जहां परम शक्ति का सानिध्य मिलता है वहां जीवन स्वयं उत्सव हो जाता है। आज का ये समापन सत्र केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि संस्कारों का, मूल्यों का, कला और संस्कृति का, आध्यात्मिकता का एक दिव्य संगम, एक अनुभव उत्सव रहा है। सबसे पहले भले आज हमारे बीच में से हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी यहां सम्मुख रूप में अभी उपस्थित नहीं है, किसी कारण से वो मीटिंग में चले गए, परंतु की अंतरात्मा तो यही है। आदरणीय राजयोग, आदरणीय हमारी तरोताजगी से संपन्न हीरो में कोहिनूर हीरा, चंद्रमा के समान शीतल मीठी प्यारी चंद्रिका दीदी का आभार और धन्यवाद। कदम कदम पर आपका जो साथ मिला, कदम कदम पर जो आपका साथ मिला, हमें यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी, यही सबसे बड़ा सम्मान मिला। दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, दीदी, मीठी प्यारी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा, नेतृत्व और अथक सेवा के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, सरोवार करते हैं। परमेश्वर को, प्यारे भगवान को, आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सेवा के लिए सामर्थ्य प्रदान करें, आपका जीवन सदा सुखी रहे। हम सबके बीच में हमारी आदरणीय प्रेम दीदी जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट एंड कला संस्कृति की, जिनकी प्रेरणादायक शुभकामनाओं ने हम सभी के हृदय को नई ऊर्जा, नई आशा और नई दिशा का संचार दिया। आज आपने अपने प्रेरणादायक अनुभव हम सबके बीच में शेयर किए। आज की सभा में हमारे बीच में हमारी आदरणीय भगिनी डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय कथक गुरु आगरा से जो हम सबके बीच में पहुंची, बहुत ही सुंदर अनुभव युक्त विचार आपने हम सबके सामने रखे। डॉक्टर बलराम गुप्ता जी, सह संयोजक दिल्ली प्रदेश भाजपा, बॉलीवुड अभिनेता, आपका भी अनुभव बहुत प्रेरणादायी रहा। डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, जब आप सुना रहे थे तो मुझे पिछले साल का अनुभव याद हो आया, आपको भी हो आया होगा, मंच पर हम दोनों ही थे और आपके अनुभव से हम बहुत लाभान्वित हुए थे कि परमात्मा की वो परम शक्ति नई ऊर्जा का संचार करती है। और आज आपने फिर से वो अपना अनुभव हम सबके बीच में रखा। आप सभी का बहुत तहे दिल से, हृदय से हम आभार करते हैं कि आपके अनुभव केवल एक शब्द नहीं, आप सभी के जो अनुभव केवल एक शब्द नहीं है बल्कि जीवन की अमूल्य हम सबके लिए प्रेरणा बन गए हैं। दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश फैलाता है, दीपक स्वयं जलता है तभी वो दूसरों को प्रकाश फैलाता है। महान व्यक्तित्व तपते हैं तभी समाज को दिशा देते हैं। दीप से दीप जलते रहे यही सच्ची बात है और यही सच्चा अभिमान है, स्वाभिमान है। हमारे बीच में दिल्ली से हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी, जो आज हम सब उनको सुन रहे थे, इतना सुंदर अनुभव जहां आप सबके मन में हलचल है कि अभी हमको जाना है, किसी को घूमना है, किसी को साइट सीन जाना है, लेकिन ऐसी हलचल में भी एक अचल और एकाग्रता का सुंदर आपने अनुभव कराया। आज हम उस व्यक्तित्व का धन्यवाद कर रहे हैं जिनके नेतृत्व में सेवा, संस्कार और समर्पण, आध्यात्मिकता का प्रकाश निरंतर फैल रहा है। पूनम दीदी जी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपकी सोच से मिलता है नई राहों को उजाला, आपकी सोच से मिलता है नई राहों को उजाला, आपके नेतृत्व ने हर दिल में विश्वास को है संभाला। सेवा, संस्कार और समर्पण की है आप एक पहचान, सेवा, संस्कार और समर्पण की है आप पहचान, स्वीकार करें हमारा सत सत नमन और सत सत धन्यवाद, आभार। इस सफल आयोजन के पीछे दिन रात समर्पित रूप से आयोजक गण, जो मंच संचालन की गरिमा बनाए रखने वाली हमारी शांत शीतल व्यावहारिक कुंदा बहन और सभी सेवाधारी और विशेष प्रस्तुति देने वाले हमारे सतीश भाई जी, जिन्होंने इतनी सुंदर प्रतिज्ञा हम सबके बीच में कराई जो जीवन को एक नई राह की तरफ लेकर जाती है। और इस सभा में रूप से, प्रतिरूप से या परोक्ष या अप्रोक्ष, हो सकता है कहीं हमको यहाँ बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहले दिन से ही जब आप यहाँ पर आए आपको रिसेप्शन में स्वीकार किया गया, आपका रजिस्ट्रेशन किया गया, आपका स्वागत किया गया और उस रिसेप्शन में आपको एक एकोमोडेशन दिया गया, एकोमोडेशन करने वाले और साथ साथ जो इस कार्यक्रम की मैनेजिंग कमेटी है जिसने बहुत विधि से, बहुत संचालित रूप से, बहुत सहज रूप से सभी को, मैं विवेक भाई को भी नहीं भूलूंगी, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से, जब आप सबके हाथ में एक बुकलेट आया होगा तो उस बुकलेट में आपने देखा होगा कि हर छोटे से छोटे वक्ता को उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल किया और उनकी शुभ प्रेरणाएं आने वाले सभी जो मेहमान थे, जो चुन चुन कर यहाँ पर आए थे, विवेक भाई अगर सुन रहे हैं तो सामने आ जाएं, विवेक भाई सामने आ जाएं, आ जाएं, विवेक भाई जी के लिए तालियां तो बनती है भाई। बहुत ही, मैं देख रही थी, मैं विवेक भाई जी को बोल भी रही थी कि आपकी ये जो दृष्टिकोण है ये अपने आप में बहुत सारे विंग्स यहाँ प्रोग्राम करते हैं और करके जाते हैं। हाँ, जोरदार ताली हो जाए, थोड़ा खड़े हो जाएंगे हम विवेक भाई जी के लिए, जोरदार खड़े होकर के सभी अभिवादन करेंगे, ये हमारा सम्मान होगा। ओके, थैंक यू, बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे विवेक भाई जी ने हर छोटे वक्ता को, हर छोटी बहन को एक जीवन में एक नई उन्नति की तरफ ले जाने का प्रयास ही नहीं किया, लेकिन ये प्रयास उनका बहुत सफल रहा। उनकी योग्यताओं को समाज में देने की एक नई कला के साथ एक नई कला और जुड़ गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विवेक भाई जी का। बजाइए तालियों में तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि तकनीकी रूप से साउंड सिस्टम है या वीडियो डिपार्टमेंट है या लाइट एंड साउंड है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, लाइट वाले, साउंड वाले भैया और कैमरा वाले जो भैया है, जरा खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, कैमरा वाले भैया, लाइट एंड साउंड वाले भैया, साउंड वाले भैया खड़े हो जाएं, इनके लिए भी हम जोरदार ताली से अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी, और आप सभी, आप सबको कैसे भूल सकते हैं, वक्ता जितने स्टेज पर बैठे हैं, इनको आपने धैर्यता से सुना, शीतलता से सुना, बहुत शांति से सुना। अगर सभा में श्रोतागण नहीं हो तो इन वक्ताओं की, हम वक्ताओं की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। तो आप सभी ने बहुत धीरज से, प्यार से हमारे इन वक्ताओं का, इन अतिथियों का सम्मान बढ़ाया, तो आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार है, धन्यवाद है। साथ ही भोजन डिपार्टमेंट है हमारा, जहां आपको नित्य नई नई डिशेस मिली, नए प्रकार के भोजन मिले। हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे ग्रुप वाले भाई बहन आए हैं तो सुना रहे थे कि दीदी इतना सुंदर भोजन तो हमें 5-star होटल में भी नहीं मिलता है, और इतनी परिवरिश तो हमारी 5-star होटल में भी नहीं होती है जो यहाँ पर हुई है। होती है ना, ऐसी हुई है ना, जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाए, है ना। तो जोरदार ताली हो जाए सबके लिए। कृतज्ञता वो पुष्प है, कृतज्ञता वो पुष्प है जो विनम्रता की डाली पर खिलता है। कृतज्ञता वो पुष्प है जो विनम्रता की डाली पर खिलता है, और जिसका जीवन धन्यवाद से भर जाता है, जिसका जीवन धन्यवाद से भर जाता है। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, सेवा का ये कारवा निरंतर साथ में आगे हम सबको बढ़ाता रहे। आइए आज यहाँ से हम, आइए आज यहाँ से हम ये संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों और भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए विश्व परिवर्तन की इस महान अभियान में अपने आप को सहयोगी, सहभागी बनाएंगे। बनाएंगे सभी, ऊपर हाथ करिए, और जो दिल से करते हैं उनकी निशानी क्या होती है, दो दो हाथ होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यही कहूंगी, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। फिर से हमारी कुंदा बहन, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस मंच को संचालित किया और आप सभी ने धैर्य पूर्वक सुना, सभी का, हमारी दीदियों का, दादियों का। एक लास्ट में आपकी 2 मिनट में जरूर लूंगी, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और ये प्रेयर जो मैं आपको कराने जा रही हूं, ये जीवन में रोज ही धन्यवाद करना है हमने। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि जहां जहां मैंने ये प्रेयर कराई है सबको बहुत अच्छी लगती है, और दिन की शुरुआत जब इससे होती है तो नई ऊर्जा का संचार होता है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर मन की आंखों से उस परमेश्वर को आज इस सभा में हम उपस्थित करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, जोर से बोलेंगे, क्योंकि जितना आप जोर से बोलेंगे उतना आपके वाणी के शब्द इस वातावरण से गूंजकर विश्व के चारों तरफ पहुंचेंगे। हे परमपिता परमेश्वर,
हे परमपिता परमेश्वर,
आपने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दादियां इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले
सभी जीव जंतु,
पशु पक्षी,
नर नारी,
मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व,
धरती आकाश जल वायु अग्नि,
सभी ग्रह,
नक्षत्र नक्षत्र
दिशा और दशाएं आप सबने मिलकर हमारे जीवन को सार्थक किया और इस कार्यक्रम को सफल किया हम सब की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है ना किसी से दुख व कष्ट लेना है हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं
और हमें किसी के द्वारा
कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमादान करते हैं धन की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो नए जीवन की
नई शुरुआत
परम प्रिय परमेश्वर के साथ सबकी दुआओं के साथ हो ओम शांति।
ओम शांति। नूतन दीदी जी का नूतन विधि से आभार मानने वाली दीदी जी का बहुत बहुत दिल से आपका आभार है। सभी का बारंबार आभार के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हुआ है और शाम को सभी फिर से हॉल में 8 बजे आएंगे। रात को 8 से 10 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम चलेगा तो सभी उपस्थित रहेंगे और साथ में जिनको भी अपनी प्रस्तुति देनी है वो 1 से 2 बजे तक हारमोनी हाउस में विजिटिंग रूम में कुंदा बहन से मिलेंगे और अपना नाम अपना मोबाइल नंबर देंगे। अच्छा, हमारे आदरणीय सतीश भाई जी एक गीत गाने वाले हैं। विवेक भाई जी और सतीश भाई जी, विदाई नहीं बधाई का गीत है। अंजलि बहन अरोरा जी अगर है तो आ जाए, अपना सर्टिफिकेट ले जाए। जिन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया हो तो वो अभी ले लेवे या रात को प्रोग्राम के बाद मिल सकेगा।
ओम शांति। सब तो चले गए हैं लेकिन सुन रहे हैं, यहाँ के जरे जरे में ये भाव है कि हम सबको ये विदाई नहीं है बधाई की वेला है, जा रहे हैं औरों को लाने के लिए जा रहे हैं, नए सुबह की शुरुआत है। आइए हम सब मिलकर फिर से मन में संकल्प करते हैं कि इस रूहानी गुलशन में हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे खिलते रहे, रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे खिलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे खिलते रहे। प्रभु पिता और दादी सीमा शीतल शीतल आंचल है, फरिश्तों जैसे हैं भाई बहने, ये घर स्वर्ग से बेहतर है, जहाँ से जाने
को जी न करता, जहाँ से जाने को जी न करता, प्रभु पलकों में पलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। बात कोई कर बुरी लगी तो मलाल उसका न कीजिए, हम आपके हैं घर आपका है, माफ हमें कर दीजिए। दादी जी संग सारे कहते, दादी जी संग सारे कहते, भला करे भूलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। यहाँ के अनुभव सुनाते सबको, प्रभु पास में लाना है। मूल्यों की जो महक मिली है, मन मधुबन महकाना है। दिलों में सबके घना अंधेरा, दिलों में सबके घना अंधेरा, सघन ज्योति बन जलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे, हम आप ऐसे मिलते रहे, सघन ज्योति बन जलते रहे, आते रहे, खिलते रहे, खिलते रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बिना प्रयास के, बिना प्रैक्टिस के, हम सब दोनों आप सबके लिए हमारे विवेक भाई को एक बार जोरदार अभिनंदन करके बहुत बहुत बधाई देते हैं।
बाकी तो ये कोई भी कार्य होता है, बाकी तो कोई भी कार्य संगठन के बिना संभव नहीं होता। जिसको जो सेवाएं मिलती हैं वो दोनों ने दिल से की हुई है, बाकी हमें जो सेवा मिली हम भी करते हैं, बाकी ये संगठन की सफलता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। थैंक यू। ओम शांति।
सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ऐसा विवेक भाई को बहुत सारा कारोबार होते हुए भी सतीश भाई जी को साथ दिया और थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, तो दोनों भ्राताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और हमें फिर निमंत्रण दिया तो हम सभी आते रहेंगे बारंबार। सतीश भाई जी के ऊपर हो रही है गोल्डन फूलों की नौछावार। बहुत बहुत धन्यवाद।